हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हिस्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिः लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तच्छ्रद्दधानमुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मानम्। ये बहुत ज्यादा बोल रहा। भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणाम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सत्वतां पतिः। श्रुतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जदनु ध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथ निबंधनम्। छिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः। श्यान महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निसेवणात्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसः भगवत भक्ति योगतः। भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयः। क्षीयन्ते सर्व कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्म प्रसादने। धर्मस्य धर्म का आप वर्गस्य ही निश्चित, आप वर्गस्य जो अपवर्ग देने वाला है उसका न नहीं, अर्थ अर्थ अर्थाय अर्थ के रूप में, उसके फल के रूप में, कल्पते न नहीं, अर्थस्य अर्थ का, धर्मैकान्तस्य जिसका एकमात्र लाभ है धर्म करना, कामः इंद्रिय तृप्ति, लाभाय फल के रूप में न नहीं, इष्यते माना जाता है, कामस्य काम का न नहीं, इंद्रिय तृप्ति है इंद्रियों को संतुष्ट कर, इंद्रियों को संतुष्ट करना, लाभ लाभ, जीवेत जीवित रहता है, जावता जब तक, जीवस्य और जीवन का, तत्व जिज्ञासा तत्व को जानना और उसे प्राप्त करना, न नहीं, अर्थ फल, यह जो, च और यह इस जीवन में या इस प्राकृत जगत में, कर्म भी ही अनेकों कर्मों के द्वारा, ऐसा तत्व को जानना और उसे प्राप्त करना, न नहीं, अर्थ फल, यह जो, च और यह इस जीवन में या इस प्राकृत जगत में, कर्म भी ही अनेकों कर्मों के द्वारा, तो कल कथा इन श्लोकों के पहले पहुंची थी, गौर कृष्णदास ने प्रस्तुत किया था, बहुत गंभीर और बहुत सीधा, बहुत अच्छा प्रवचन किया था, तो उसके बाद का श्लोक मैं ले रहा हूं। शिलसुत गोस्वामी नैमिषारण्य के सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो यहां से वे कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोल्लाभाय इष्यते। मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ हैं। पुरुष का अर्थ होता है जीव या मनुष्य, और अर्थ का अर्थ प्रयोजन लक्ष्य। इस जीवन में जो चीज वो प्राप्त करता है उसको चार भागों में बांटा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इनको शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा जाता है, पुरुष का अर्थ, पुरुष का वास्तविक लाभ। तो सबसे पहला है धर्म, इसके बाद अर्थ और काम, इसके बाद मोक्ष। तो यहां पर जैसा सूत जी ने कहा कि यदि कृष्ण कथा में कृष्ण के श्रवण कीर्तन में, उनके नाम उच्चारण में, उनकी सेवा में, विशेष करके उनके बातों में यदि रुचि नहीं उत्पन्न हुई धर्म का पूरा पूरा अनुष्ठान करने पर भी, तो ऐसा धर्म केवल परिश्रम है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसम विश्वक्षेण कथा सु नोत्पादे यतिरतिम श्रम ये वही केवलम। तो मनुष्य समाज चार वर्ण और चार आश्रम में बटा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक आश्रम के धर्म का या वर्ण धर्म का पालन करे तो उसे भगवान की कथा में प्रेम होता है। लेकिन यह पूर्ण गारंटी नहीं है कि कथा में प्रेम हो ही जाए। अतः सूत जी कहते हैं कि सुअनुष्ठित धर्म भी यदि विश्वक्सेन की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं किया तो वह धर्म का अनुष्ठान केवल लेबर मात्र है, केवल परिश्रम है। तो इस पर मान लीजिए श्रोता सौनकादि पूछे कि अरे धर्म आदि के विषय में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब वे कहते हैं धर्म का वास्तविक फल है अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष, और अर्थ का वास्तविक फल है धर्म। और इसके बाद वे कहते हैं काम का वास्तविक फल है जीवित रहना, जी जाना। इंद्रिय तृप्ति उसका फल नहीं है। और जीने का क्या फल है, जीने का फल है तत्व जिज्ञासा। धर्म का अर्थ है वैदिक कर्मों का अनुष्ठान, जैसे यज्ञ करना, दान करना, तप करना, वेदाध्ययन करना, इसको धर्म कहते हैं। और इस धर्म को जीवन में अनुष्ठित करने के लिए अधिकारी भेद से वर्ण और आश्रम की स्थापना हुई इस वैदिक धर्म के पालन के लिए, तो इसको धर्म कहते हैं। इसके फल, इसका पालन करने से स्वाभाविक मनुष्य को स्वर्ग लोक के सुख की प्राप्ति होती है। इस जीवन में भी वो सुख से रहता है और बाद में उसे उत्कृष्ट लोक मिलते हैं जहां वो जीवन का सुख बेटर भोगता है। परंतु सूत गोस्वामी जी कहते हैं धर्म का यह फल नहीं है। धर्म यदि कोई करता है, जैसे मान लीजिए तप कर रहा है, दान कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म के काम कर रहा है, तो उसका वास्तविक फल है अपवर्ग। श्रील प्रभुपाद जी प वर्ग का अर्थ करते हैं, जो प वर्ग है, एक हिंदी जो पढ़े हैं या संस्कृत वो जानते हैं, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांच वर्ग हैं, पांच पांच का। तो प वर्ग का अर्थ होता है प फ ब भ म। तो अप वर्ग का अर्थ करते हैं श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प का अर्थ है परिश्रम। ये टीका में भी संस्कृत के लिखी गई है बात। इस संसार में मनुष्य को घोर परिश्रम करना पड़ेगा जीने के लिए। इस संसार में परिश्रम करना यहां के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। बिना परिश्रम के आदमी जी ही नहीं सकता है, उसका काम चल ही नहीं सकता। जैसे वे उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद के, जंगल में सिंह रहता है, वो जंगल का राजा है, लेकिन उसको भी अपना शिकार ढूंढने में परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जंगल का राजा है इसलिए पशु सब हरिण या और कोई पशु लाइन लगा करके खड़े हैं कि हम बाघ के मुंह में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में ये पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसको अपना शिकार खोजना पड़ता है, परिश्रम बहुत पड़ता है, कई दिन भूखे भी रहना पड़ता है। कोई पशु नहीं मिला, हरिण आदि यदि उसके रेंज में नहीं आए तो कई दिन भूखे रहना पड़ता है। जो मांसाहारी हैं वे लोग अगले जन्मों में खाना बिना मरेंगे, ये नियम है। तो कोई सिंह बना हुआ है तो उसे कई दिन भूखे रहना पड़ता है, ढूंढता है और उसकी बोली को देखते रहते सुनते रहते हैं कुछ जीव जैसे सियार आदि और देखते रहते हैं तो वे हुआ हुआ बोलकर हल्ला कर देते हैं कि सिंह निकला है अपने मांद से, हे पशुओं सब सावधान हो जाओ। तो हरिण वगैरह सावधान हो जाते हैं तो भोजन नहीं मिलता। तो यह तात्पर्य है कि सिंह जैसे बलवान व्यक्ति को भी परिश्रम करना पड़ता है। ये संसार प वर्ग और कितना परिश्रम, इतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा कि फ प के बाद फ आता है, फ माने फेनिल, उसे मुख से फेन निकालना पड़ेगा, गाज फेंकना पड़ता है, गाज निकालता है, इतना भारी परिश्रम। आप सबने देखा है कि बैलगाड़ी में भारी बोझ ढोने से बैल के मुख में फेन आ जाता है, भैंसा के मुख में फेन आ जाता है। इतना परिश्रम करना पड़ेगा इस संसार में कि गाज फेंकना है, ये संसार का स्वरूप है, यहां रहने पर ऐसा परिश्रम करना पड़ेगा। तो प और फ और ब, ब का अर्थ सारा परिश्रम व्यर्थ होगा। जीव मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए परिश्रम कर रहा है लेकिन उसे परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। तो प फ और इसके बाद व्यर्थ और भ, भ का अर्थ भय बना रहता है। इस प्राकृत जगत में प्रत्येक व्यक्ति को भय बना रहता है, सिक्योरिटी रखता है और कई तरह का भय है। कुत्ते को भय क्या है, वो अपने घर से गांव से निकलेगा तो उसको सबसे बड़ा भय अपने जाति के लोगों से है, कुत्ता से ही भय है। इस प्रकार मनुष्यों को मनुष्यों से भय है, कहीं भी भय से बना हुआ है जगत, यह भय का स्वरूप है इस जगत का। जब तक जिएंगे भय बना रहेगा, कई प्रकार का भय मनुष्यों से, सरकार से भय है और दूसरे दूसरे आतंकवादियों से भय है, ये है वो है। तो वास्तव में सरकार तो जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है लेकिन कुछ लोगों को भय होता है, जैसे इनकम टैक्स देने में भय होता है, हाय हमारा इतना इनकम ना चला जाए, हमारा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। एक पक्षी को भी अगर चारा डाला जाता है तो पक्षी चुगता है लेकिन थोड़ा सा ताली बजाइए तो उड़ करके भाग जाता है, उसको भय है, भोजन छोड़ करके उड़ करके भाग जाता है। मनुष्यों को भय है, किवाड़ लगाते हैं, सो जाते रात में तो किवाड़ बंद करते हैं और क्या क्या प्रबंध करते हैं, भय है। ताला लगाते हैं, ताला किस लिए लगाते हैं, मनुष्यों से भय है, कोई पशुओं से भय नहीं है। पशु को तो केवल सांकल लगा दीजिए, किवाड़ बंद है तो वो तो छुएगा भी नहीं, चला जाएगा। लेकिन आदमी अगर देखे कि इसमें ताला नहीं है तो घर के भीतर जो कुछ बंद है उठा कर ले जाएगा, ये भय है। कई प्रकार का भय है संसार में, मरने का भय, रोग का भय, अपमान का भय, शीत उष्ण सर्दी गर्मी और भूख प्यास, इन सबसे जीव लड़ रहा है, इसको भय कहते हैं। पर परिश्रम फेन फेंकना और व्यर्थ सब परिश्रम है, भय बना हुआ है और अंतिम परिणाम क्या है, मृत्यु। सब कुछ करने के बाद मरना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। मृत्यु का क्या अर्थ है, मृत्यु का अर्थ है सब कुछ छोड़ करके चले जाना, यही मृत्यु का अर्थ। मृत्यु सर्व हरश्च अहम्। मृत्यु की विशेषता बताते हुए भगवान गीता में कहते हैं सर्व हर, मृत्यु सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ। बैंक में पैसा पड़ा है वो छीन लिया जाएगा, घर में गैरेज में कार पड़ी है वही रह जाएगी, पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। यहां तक कि ये लालित किया हुआ पोसा हुआ देह भी यही छूट जाएगा, इसको सर्व हरह कहते। तो इस संसार का यह स्वरूप है, यहाँ भय है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ सब कुछ है और सब कुछ व्यर्थ है। तो अपवर्ग का अर्थ होता है जहां मृत्यु नहीं है, जहां भय नहीं है, जहां परिश्रम नहीं है, उसको अपवर्ग कहते हैं। भगवान का धाम, मुक्त हो जाना इस संसार बंधन से। तो धर्म का वास्तविक फल है अपवर्ग, मुक्ति प्राप्त करना। और अर्थ का क्या फल है, अर्थ का फल है धर्म, धर्म करना। तो यहां पर धर्म का अर्थ भगवत भक्ति होगा। किसी के पास यदि धन है, जीने की सुविधा है, बहुत पैसा है, फैसिलिटी है, सुंदर शरीर है, युवक शरीर है, तो इन सब साधनों को अर्थ कहा गया है। जैसे घर में फर्नीचर अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, कार हो, सब कुछ ठीक है, धन बना हुआ है बैंक में भी, घर में भी, सब जगह, तो उसका फल क्या है? सूत जी कहते हैं उसका फल है धर्म करना। इंद्रिय तृप्ति उसका फल नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास भोगों की फैसिलिटी है, तो हम ये भोगे ये भोगे, ये लाभ नहीं है। अर्थ का ये लाभ नहीं है कि अपने घर में भोगों की सामग्री संचित की जाए, ये सूत गोस्वामी कहते हैं। उसका फल है धर्म करना, भगवान के भक्ति में सहायता करना, सुविधा देना लोगों को भगवान के बारे में जानने का, प्रचार करना, ये तीर्थ यात्रा करना और सब करना, ये सब अर्थ का फल। अर्थ का फल इंद्रिय तृप्ति नहीं, काम नहीं है। और काम यदि है, काम का अर्थ है इंद्रिय भोगों के उपकरण, जैसे अच्छा घर, धन, अच्छा स्वजन, सब कुछ पर्याप्त फैसिलिटी है, तो वह भोगने के लिए नहीं है, इंद्रियों को सुखी करने के लिए नहीं है। तो काम की जो ये चीजें हैं, बहुत फैसिलिटी है, वह उसका फल क्या कब तक है? लाभो जीवेत जावता, उसका लाभ बाद में कुछ नहीं है। जब तक जी रहा है और केवल जी जाए, यही उसका फल है। जीने के लिए सब है, जी जाए इतना ही लाभ है बस। भोग भोगना, बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छा घर बना करके रहना और इंद्रियों को तृप्त करना, अब घर है तो उसमें चमड़े को अनुकूल वायु उपस्थित करना, जैसे एसी रूम है, एसी रूम में जो खर्च होता है एसी बनाने में, उस खर्च को रोक करके यदि गरीबों को दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू है वास्तव में, पर मनुष्य ने ऐसी आवश्यकता बढ़ा ली है, अपने आवश्यकताओं को इस तरह से बढ़ा लिया है कि वो उसे बाधित हो गया, बिना एसी के नहीं रह सकता। या और भी कई फैसिलिटी है काम इंद्रिय तृप्ति, तो पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है, पर अगर सुविधा है वस्तुओं की, तो काम का यह फल नहीं है इंद्रिय तृप्ति करना। इंद्रियां कभी तृप्त हो भी नहीं सकती है, इंद्रियों का स्वभाव है, चाहे कितना भी अमाउंट दिया जाए, कितना भी सुख की सामग्री उसे दी जाए, उसे संतुष्टि नहीं होती है, इंद्रियों को कभी संतुष्टि नहीं होगी, इंद्रियों का स्वभाव है। न उसे खाने से कभी संतुष्टि होगी, न स्त्री संग से कभी संतुष्टि होगी, और न तो दर्शन से कभी संतुष्टि होगी, इंद्रियों की मांग बढ़ती जाती है। अच्छा, लाभ है जीना, इतना ही खाए इतना ही पिए, जी जाए यही लाभ है यहाँ की वस्तुओं से। और जीने का क्या लाभ है, क्यों जिए, ये प्रश्न होता है, कोई आदमी क्यों जिए, जीने का क्या लाभ है? तो जीवस्य तत्व जिज्ञास, जीने का वास्तविक लाभ है कि जी करके भगवान के विषय में जानकारी प्राप्त करे और उनसे प्रेम करे, जो तत्व जिज्ञासा कहते। तत्व का अर्थ होता है असली वस्तु से तत्व। श्रील जीव गोस्वामी पाद तत्व की परिभाषा करते हैं, जो आगे तो दिया ही गया है लेकिन उसको स्पष्ट करते हैं। स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, इन सबके जो आश्रय हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं को शास्त्रों में तत्व कहा गया है। और सब चिदानंदमय होता, चिदान उनका आश्रय, भगवान सबके आश्रय हैं, वास्तविक चीज वही है, उन्हीं की सत्ता पर सबकी सत्ता है, और उनकी सत्ता अन्य निरपेक्ष है, किसी पर आश्रित नहीं है, तो उन्हीं को शास्त्रों में तत्व कहा गया है। तत् शब्द है, उसमें त्व लगा हुआ है, तत्व। तत्व असलियत, असली वस्तु। जीवन में सार क्या है, सत्य क्या है, उस परम सत्य को आगे बताया गया है, परमेश्वर को, भगवान को, ब्रह्म को पा जाना, जानना, यही है जीने का फल। नार्थो जश्चेह कर्म भी, जीव से तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चेह कर्म भी। इस संसार में कोई जीवित हो बहुत दिन, तो उसका ये फल नहीं है कि वो बहुत बहुत काम करे, बहुत बहुत काम करे और उनका फल भोगने की चेष्टा करे। इस संसार में सब सबकी यह स्वाभाविक इच्छा है कि हम ज्यादा दिन जिए, है ना। कोई भी आदमी नहीं है जो ये सोचता होगा कि हम कितना जल्दी मर जाएं, कोई नहीं होगा। सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत दिन जिए। हमारे गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, तो एक बार हम लोग उनका दर्शन करने गए, बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, अब तो नहीं है। तो वो हमसे कहने लगी कि बेटा हमारे कागज भुला गोइल बा, जमराज भेजले होखियन लेकिन पहुंचल ना। मतलब जमराज जी ने जो नोटिस भेजा था हमको मरने के लिए, वो कागज हेरा गया, भूल गया। इसका मतलब कि मुझको मार नहीं रहे हैं जमराज जी। सब लोग चाहते हैं कि हम बहुत दिन जिए। हमारे गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, तो एक बार हम लोग उनका दर्शन करने गए, बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, अब तो नहीं है। तो वो हमसे कहने लगी कि बेटा हमारे कागज भुला गोइल बा, जमराज भेजले होखियन लेकिन पहुंचल ना। मतलब जमराज जी ने जो नोटिस भेजा था हमको मरने के लिए, वो कागज हेरा गया, भूल गया। इसका मतलब कि मुझको मार नहीं रहे हैं जमराज जी, मैं मरना चाहती हूं। तो हमने एक नाटक किया, माता जी को कहा कि ठीक है, देखिए ये बिजली का तार है, वो खुला तार नहीं था और करंट भी नहीं था, लेकिन हमने कहा कि ये बिजली का तार है, हम लोग जब आपके घर से बाहर चले जाएंगे तो इसको छू लो, छुओगी तो मर जाओगी, हम लोग के रहते रहते मत छुओ नहीं तो हम लोग पर केस हो जाएगा। तो माता जी से कहा कि जब हम लोग घर के बाहर चले जाएं तो इस बिजली के तार को छू लो, छूते ही तुम बोल भी नहीं पाओगी, मर जाओगी। तो माता जी कहती हैं, ऐसे थोड़े मरूंगी। तो मैं कहा कि ये कहो कि मरना नहीं चाहती हो, क्यों झूठ बोल रही हो कि मरना चाहती हो। तो कहते हैं कुछ लोग झूठ मूठ के कि अब ऊब गए हैं जिंदगी से, अब राम जी ले चलते तो अच्छा होता। ये झूठी बात है, कोई मरना नहीं चाहता। और उसके चार बरस के बाद, नहीं वो एक बरस के बाद ही हम आए गांव पर, तो पता लगा कि माता जी का वो कागज जो हेरा गया था मिल गया और चली गई। तो इस तरह से वो तो सेट है, कंप्यूटराइज्ड है, किस दिन शरीर छोड़ना है उस दिन छोड़ना ही पड़ेगा, उसी समय पर, हम लोगों को पता नहीं होता। तो प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि जी करके वो करना क्या चाहता है। वो जी करके बहुत बहुत काम करके और खाना पीना या वह यही करना चाहता है, पर माया शक्ति उसको बहुत दिन अलाउ नहीं करेगी यहां रहने के लिए, कुछ खास समय में मर ही जाना पड़ेगा और उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। किसी व्यक्ति से पूछा जाए आपकी इच्छा पूरी हो गई है, तो कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल, ये चाह है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, अब मैं मरना नहीं चाहता हूं, भगवान कुछ और बरस रख देते तो अभी मैं खाता पीता इंद्रिय तृप्ति करता तो सुखी हो जाता। लेकिन प्रत्येक जीवन में तो यही कर रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जीने का फल है भगवान की जिज्ञासा करना। जिज्ञासा के दो अर्थ है, जानने की इच्छा और पाने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ होता है तत्व जिज्ञासा। जो तत्व है, वास्तविक वस्तु है इस संसार में श्री भगवान, उनको जानना और उनको पाना, यही है जीने का फल। पर उनको कैसे जाना जाएगा, कैसे पाया जाएगा, उपाय है उसके लिए। जैसा सूत जी कहते हैं, भगवान के विषय में सुनना, भगवान का जप करना, कीर्तन करना, गुणानुवाद करना, प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, आगे सब बात बताई गई है। तो इस प्रकार जीवन का फल है भगवान को पाने की इच्छा, यही फल है, भगवान को जानने की इच्छा और उनको पाने की इच्छा। तो तत्व क्या है, ये प्रश्न होता है। उन्होंने कहा जीने का फल है तत्व जिज्ञासा। तो तत्व क्या है, तो श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी शास्त्र और संत लोग कहते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्त्वविदः, तत्वज्ञ लोग जो तत्व को ठीक से जानते हैं उनको तत्त्वविदः कहा गया, तत्वेतागण। जो तत्व को ठीक से जानते हैं वे बोलते हैं, वे प्रवचन करते हैं, बताते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं, तत्त्वविदः तत्त्वं वदन्ति। तत्वेता लोग उस तत्व के विषय में बोलते हैं, बताते हैं। तत्व क्या है, जब ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है वही तत्व है। ज्ञान का अर्थ है चिदेक वस्तु, जो पूर्ण चिन्मय है, जड़ जिसमें कुछ भी नहीं है, और वह अद्वय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, और उसी पर सबकी सत्ता है, जिसमें स्वजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नहीं है। ये सब शास्त्र के वाक्य हैं, यहाँ इसके व्याख्या की कोई बहुत जरूरत नहीं है, और न तो व्याख्या के बाद भी ये ग्राह्य है, पर सीधा समझना चाहिए। तत्वेता लोग जिस तत्व को कहते हैं वो तत्व है अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो अद्वय तत्व ज्ञान क्या है, वो अद्वय ज्ञान क्या है, वो है ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण। इसको बहुत तरह से सिद्ध किया गया है, लेकिन हमको एक तो इतना समय यहाँ नहीं है उतना विस्तार से प्रवचन करने का, और आप लोगों के पास भी यह सब तैयारी नहीं है, इतना समय नहीं है, और हमको वो ज्ञान भी नहीं है पूरा कि हम उसको बता सके। तो ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्द देते, उसी परम तत्व को तत्ववेता लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। इति शब्द देते, तत्व एक ही है, जैसा अद्वय कहा गया एक है, लेकिन उसको ये तीन नाम देते हैं, ब्रह्म इति, परमात्मा इति और भगवान इति। उसी परम तत्व को, अद्वैत तत्व को ज्ञानी लोग, भक्त लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं, एक ही है वो, लेकिन उसको ये तीन नाम क्यों देते हैं, रियलाइजेशन के भेद से। सिर्फ जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पर्वत है, तो पर्वत को, पहाड़ को यदि दूर से देखा जाए तो वह केवल सांवला सांवला एक दृश्य दिखाई देता है, ये बहुत दूर से रियलाइज किया जाता है, ये नहीं पता चलता है कि यहां पत्थर है, पेड़ है या पशु है, नदी है, दूर से केवल नीला नीला दृश्य दिखाई देता है, और निकट यदि जाएंगे तो इतना पता लगेगा यह पर्वत है, लेकिन जब बिल्कुल निकट जाएंगे, पर्वत में प्रवेश करेंगे, तब पता चलता इधर नदी है, इधर यह शिखर है, इधर यह वृक्ष है, यह झील है, सरोवर है, पशु घूम रहे हैं इत्यादि। तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण का बहुत दूर से, परमात्मा भगवान का दूर से रियलाइजेशन जो होता है, तो वो केवल एक सत्ता के रूप में रियलाइजेशन होता है कि भगवान हैं, लेकिन उनका आकार वगैरह दिखाई नहीं देता है। बहुत दूर से रियलाइजेशन का मतलब देश की दूरी नहीं, ज्ञान की दूरी। अभी जिन लोगों को कम ज्ञान है, दूर से रियलाइज करते हैं, तो वे लोग यही कहते हैं कि भगवान हैं, तो उनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं यह सर्वव्यापक है, इसका कोई आकार नहीं है, इसका कोई विशेष रूप आदि नहीं है, तो इसको ब्रह्म रियलाइजेशन कहते हैं। यद्यपि उस वस्तु का, जैसे पहाड़ का मैं उदाहरण दिया, उसमें रूप है, आकार है, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन दूर से रियलाइजेशन करने पर आदमी सोचेगा केवल नीला दृश्य है, धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। और जब और निकट से साक्षात्कार करेगा व्यक्ति, तो उसको पहाड़ के रूप में दिखाई देगा। तो जो लोग निकट से भगवान को कुछ देखना देखने का प्रयास करते हैं, तो इतने रियलाइज करते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा रूप से अवस्थित है, उनका आकार है लेकिन भगवान हृदय में अवस्थित है। पर बिल्कुल निकट से जब भगवान का रियलाइजेशन होता है, तब पता चलता है ये तो परम सुंदर पुरुष हैं, बांसुरी बजाते हैं, मोर पंख पहने हैं, और इनके परिकर हैं, ये लीला करते हैं, नाना प्रकार के गोवर्धन धारण करते हैं, कालिये के फण पर नृत्य करते हैं, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, ये सब भगवान के विशेष विशेष लीलाओं का, उनके स्वभाव का, रूप का, सबका पूर्ण रियलाइजेशन जब होता है, तब उनको भगवान कहते हैं। समस्त अशेष ऐश्वर्यों से जो युक्त हैं और अनंत अद्भुत लीला करते हैं, उनको भगवान कहते हैं। तो एक ही परम तत्व को साक्षात्कार भेद से कोई कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, और कोई भगवान कहते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म रियलाइजेशन भी कृष्ण का ही रियलाइजेशन है। कृष्ण सत्य हैं, चिन्मय हैं, और सब सब जगह हैं, और प्रकृति के किसी भी पदार्थ से परे हैं। उनका रूप है लेकिन ऐसा रूप नहीं है, नाशवान रूप नहीं, वो नित्य है, और जड़ भौतिक नहीं है, चिन्मय है, और ज्ञान घन है वो। तो इस प्रकार का रियलाइजेशन जो है वो ब्रह्म रियलाइजेशन है। और हृदय में परमात्मा का, कृष्ण का जो ध्यान किया जाता है, वो परमात्मा साक्षात्कार है। और भगवान का अपनी लीला भूमि में, वृंदावन में, द्वारका में, मथुरा में, कुरुक्षेत्र में जो उनकी लीलाएं हैं, इन लीलाओं के साथ, परिकरों के साथ वे नित्य लीलायमान है। इस साक्षात्कार को भगवत साक्षात्कार कहा जाता है। यह पूर्ण साक्षात्कार है, यह भगवान का वास्तविक साक्षात्कार है। तो इन्हीं की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, और उन्हीं के चरण कमल को पाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जीवित रहने का यह फल है, जीवन का फल है भगवान कृष्ण को जानना और उनसे प्यार करना। वदन्ति तत् तत् विदस् तत्त्वम् जज ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। यह कहकर के सुद गोस्वामी कहते हैं, तत्व जिज्ञासा क्या चीज है, कैसे उसको पाएंगे, कैसे उसको जानेंगे, तब यह श्लोक कहते हैं। तत्दधान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। इस तत्व को, भगवान श्री कृष्ण को कैसे जाना जाएगा और कैसे उनको प्राप्त किया जाएगा, इस श्लोक में बताया जा रहा है। तच्छद्दधाना मुनयो, मुनिजन जो मननशील विचारवान भक्तजन हैं, जो गंभीरता से भगवान के लीला आदि का मनन करते हैं, उनको मुनि कहते हैं। और उनमें दूसरा गुण लगा रहे हैं श्रद्धाना, परम श्रद्धालु, जिनकी श्रद्धा है भगवान कृष्ण में कि कृष्ण ऐसे हैं, उनका ये रूप है, उनका यह गुण है, उनकी ये लीलाएं हैं, और जीवों के साथ उनका बहुत निकट का संबंध है। इन बातों में जिनकी अनुकूल बुद्धि है और भगवान श्री कृष्ण को रियली जो पाना चाहते हैं, उनको श्रद्धाधाना कहते हैं। श्रद्धा जिनकी है, जो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पाना और जानना वही चाहेगा ना जिसकी उस वस्तु में श्रद्धा है, और जो उस वस्तु को पाना जानता ही नहीं है तो क्या पाने की इच्छा करेगा। तो श्रद्धा का यह अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण हैं और परम सुंदर हैं, सब कुछ ज्ञान वैराग्य आदि में पूर्ण है, और वही वास्तविक तत्व हैं, वही वास्तविक वस्तु हैं, उनको हमें पाना है, इस जीवन में कृष्ण को पाना है, कृष्ण से प्रेम करना है। इस प्रकार की जिसकी बिल्कुल सुनिश्चित धारणा है, जिसका ये उसको श्रद्धाना कहते हैं, श्रद्धालु। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा है कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है सुदृढ़ विश्वास। सुदृढ़ का अर्थ है उसके विश्वास को तीनों कालों में किसी भी तरह से डिगाया नहीं जा सकता। का निर्णय है कि हमें कृष्ण को पाना है, कृष्ण को पाना है, और कृष्ण को पाने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है, और भक्ति में भी सर्वोत्तम है भगवान के विषय में सुनना और उनका नाम जप करना, इसको श्रवण कीर्तन कहते हैं, सुनना। तो जिसके हृदय में श्रद्धा है कि कृष्ण को सुन करके पाया जा सकता है, श्रवण करके पाया जा सकता है, तो उसको श्रद्धालु कहा गया है, दृढ़ श्रद्धा। और कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, उस भक्त के उस साधक के मन में यह धारणा होती है कि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं तो कृष्ण मुझको मिलेंगे, और यही मुझे करना है, यही करना है, मुझे भागवत सुनना है, सुनना है मुझे भगवान के नाम का जप करना है, हमेशा वर्णन करना है उनके गुणों का। जिसके जीवन में यह दृढ़ आस्था है, इस यह करके वो जानता है कि हमारे जीवन में जो भी करने लायक काम है वो हो चुका है। यदि मैं भगवान की कथा सुनता हूँ, मैं भागवत पढ़ता हूँ, भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ, तो जीवन में हमें जो भी करना है यही करना है बस, और हमें कुछ नहीं करना है। इसको श्रद्धा कहते, श्रद्धा धाना मनयो। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो ऐसे श्रद्धालु जन भक्ति के द्वारा भगवान को अपने मन में देखने हैं, देखते हैं, और च कार्यकार्थ है च, और बाहर भी देखते हैं, बाहर भी अपने जुगल नेत्रों से भगवान के परम मधुर स्वरूप का वे दर्शन करते हैं। भीतर तो देखते ही हैं, कथा श्रवण करके और अन्य तरह से मनन करते हैं, तो भगवान के परम सुंदर श्री विग्रह को, रूप को देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, पश्यन्ति, और च अनुभवन्ति, इसका अर्थ ये। अरे ठीक ठीक, पश्यन्ति और च, पश्यन्ति का अर्थ देखते हैं, कहाँ देखते हैं, आत्मनि, आत्मा में, मन में देखते हैं, भगवान को मन में देखते हैं। और च शब्द की दिया गया है उसका अर्थ है बाहर भी देखते हैं, बाहर भी भगवान को देखते हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि उनके नेत्रों के सामने भगवान थिरकते हुए उपस्थित हो जाते हैं, बांसुरी बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, अथवा कोई लीला करते हुए उनके आंखों के सामने प्रकट होते हैं। और भक्त पहले से तो मन में देखते ही रहते हैं, आत्मनि पश्यन्ति और च बहिः पश्यन्ति, श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं च का, बाहर भी देखते हैं भगवान के परम मधुर स्वरूप को। कैसे देखते हैं, भक्त्या, भक्ति से देखते हैं। भक्ति कहाँ से मिल जाती है ये प्रश्न होगा, उनको भक्ति कहाँ से मिलती है, श्रुत गृहीतया, श्रुत गृहीतया कि सुन करके जो प्राप्त होती है, जो सुन करके ग्रहण की गई है उस भक्ति से, सुन करके। वास्तव में यह नियम है कि सर्वप्रथम कोई व्यक्ति, कोई साधक, शिष्य गुरु के मुख से भगवान के गुणों का वर्णन सुनता है, इसको श्रुत कहते हैं। भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में वो सुनता है और उनकी कथाओं को और भक्ति सिद्धांत को, ऐसा करने से भगवान मिलेंगे, ऐसे वैसे जो नवधा भक्ति है, या नवधा भक्ति भी फिर जो 64 भक्ति में बदल जाती है, इन सब भक्ति के बारे में वो पहले सुनता है और सुन करके उसे ग्रहण करता है। सुनना अलग चीज है और सुन करके ग्रहण करना अलग चीज है। तो श्रुत गृहीता भक्ति, गृहीता का अर्थ है कि भगवान के भक्ति को सुनता है और सुन करके साधना अनुष्ठान में साधन करना चालू करता है, साधन करने लगता है, इसको ग्रहण करना कहा जाएगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सुना कि भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है कि सारा कर्म बंधन मिट जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, तो वह व्यक्ति भगवान के नाम का जप चालू करता है, कीर्तन चालू करता है, तो इसको ग्रहण कहते हैं। गुरु के मुख से भक्ति की महिमा और भगवान के रूप आदि की बात सुन करके वह व्यक्ति अनुष्ठान करता है, साधन अनुष्ठान उसको कहते हैं। साधन अनुष्ठान का मतलब वह पढ़ जाता है सुनने पर, पहली बात यह है कि वो पढ़ जाता है सुनने पर, श्रवण करने पर, कीर्तन करने पर, वंदना करने पर, कई प्रकार के भगवान की सेवा पूजा आदि करने लगता है, तो इसको श्रुत गृहीता भक्ति कहते हैं। वास्तव में भक्ति प्राप्त होती है सुनने से। गुरु ऐसा नहीं है, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता है कि अब वो कहीं से कोई सामान खरीद करके और कहीं लगा दिया। जैसे मान लीजिए सॉकेट बना हुआ है बिजली का, तो उसमें बल्ब फ्यूज कर जाए तो कोई बल्ब बाजार से खरीद करके लगा देता है। भक्ति ऐसे नहीं मिलती है, भक्ति ऐसे नहीं मिली है कहीं से ले करके और लगा दीजिए। पहले वो सुनी जाती है और सुन करके ग्रहण की जाती है, श्रुत गृहीतया भक्त्या। तो जो गुरु मुख से भगवान के रसमय लीलाओं को सुनता है व्यक्ति, उनकी विशेषताओं को, गुणों को, और इसके बाद भक्ति के अंगों में जिसमें श्रवण प्रधान है और कीर्तन, श्रवण कीर्तन में लग जाता है, तो इसको गृहीता कहा गया, सुन करके ग्रहण किया है अपने जीवन में। तो सुन करके जिस भक्ति को ग्रहण किया, उस भक्ति के बल से भगवान को भीतर भी देखने लगता है और कालांतर में भगवान को बाहर भी देखने में समर्थ हो जाता है। भगवान उसके सामने स्फुरित होते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं, केवल भावना में नहीं, भगवान उसके भक्ति से प्रभावित होकर उस भक्त के आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसको कहते पश्यंती, सीधा सोझा क्रिया का प्रयोग है, पश्यंती देखते हैं। कहां देखते हैं? आत्मनि, और च बहि अपि, बाहर भी देखते हैं भीतर भी देखते हैं। प्रेमांजन छ्रित भक्त विलोचने न संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। ये क्या बात है, कुछ भक्त लोग उधर क्यों खड़े हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या भागवत सुनते हैं, क्या आयोजन किए, कई उधर खड़े हुए बिना मतलब के। तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस तरह से ये भक्ति का जीवन व्यर्थ, केवल शो किया गया है, भागवत करा रहे हैं, भागवत करा रहे। तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? कौन सा आवश्यक कार्य इस श्रवण से आ गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से थर्ड क्लास का आयोजन, ऐसा नहीं था कि नैमिषारण्य के ऋषि लोग उसमें से कुछ फोन अटेंड कर रहे हैं, कुछ कहीं गए हैं, कुछ कहीं गए हैं, डिवोटी हैं, डिवोटी है। तो सूत गोस्वामी यहां पर श्रवण की महिमा ही बता रहे हैं। श्रुत गृहीतया भक्ति श्रवण से प्राप्त होती है। वैष्णव के मुख से, गुरु के मुख से जब व्यक्ति सुनता है भगवान के बारे में, तो भगवान के प्रति प्रेम छल छला जाता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसी को भक्ति शब्द से यहां अभिहित किया गया है। भगवान की कथा सुनने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है तब व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, भगवान दिखाई पड़ते हैं। मन में तो स्फुरित होते ही हैं, बाहर भी वे प्रकट होते रहते हैं, बाहर प्रकट होते। इस तरह से उस अद्वैत तत्व को, अद्वैत ज्ञान तत्व को, भगवान को श्रवण से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है, यह भी बता रहे हैं सूत गोस्वामी। जैसा उन्होंने कहा कि अगर अपने कर्तव्य का पालन आदमी करता है, पर कर्तव्य का पालन करने के बाद भी भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो सब बेकार है। श्रम एव ही केवलम, तीन तीन अवधारणा लगा रहे हैं, वह ड्यूटी का पालन या वर्ण आश्रम आदि के धर्म का पालन केवल श्रम है। लेकिन नहीं नहीं, धर्म पालन का कुछ तो अर्थ होगा, कुछ फायदा होगा। नहीं, कुछ नहीं। फायदा क्या है? फायदा यह है, जैसे भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असौ क्लेशलैव शिष्यते नान्यत् यथास्थल तुषावघातिनां। जो व्यक्ति भक्ति को छोड़कर, और भक्ति में प्रधान है श्रवण कीर्तन, ये बात पहले समझ लेना चाहिए। वो ब्रह्मा जी भी कहते हैं श्रेय श्रुतिम, जो श्रेय का प्रवाह उत्पन्न करने वाली है, जहां से कल्याणों का पुंज निकलता है, जितना भी जीवन में श्रेय है, सुख है, सफलता है, वो भगवान की भक्ति से निकलता है। तो श्रेय श्रुतिम कहते हैं, श्रेय को जन्म देने वाली भक्ति को छोड़कर जो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता है, केवल परिश्रम मिलता है। तेषामसु क्लेशलैव शिष्यते यथास्थल तुषावघातिनां। उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पर्वत के बराबर चावल का छिलका दिया जाए, भूसी का पहाड़ जैसा, और वो व्यक्ति मान लीजिए भूख से मर रहा है, उसको भात चाहिए, भात भात कर रहा है, मुझे सुख चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। तो कोई दयालु आदमी मूर्खतावश उसको चावल के तूस भूसी को दे दिया, एक ट्रक दे दिया, मान लीजिए ले जाओ और इसमें से चावल निकालो जिसमें एक कण भी चावल नहीं है। तो उस तुस को, भूसी को अगर कोई ले जाकर के चावल प्राप्ति की आशा से कूटना चालू करे तो उसको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा, केवल दुख, पैर में, हाथ में, शरीर में दर्द मिलेगा, भात तो मिलेगा नहीं। अगर तुषावघाती नाम, तुस पर अवघात कर रहा है, कूट रहा है चावल प्राप्ति की आशा से, तो उसे केवल दुख ही दुख मिलता है और कोई फल नहीं। उसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता है, कथा नहीं सुनता है, कीर्तन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को अन्य साधनों का अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो वह प्रयास, वह धर्म पालन सब उसका केवल क्लेशलैव शिष्यते, उसको दुख ही देता है, सुख नहीं दे सकता। सुध गोस्वामी ये बात कह रहे हैं। तो भगवान को पाने का उपाय है भक्ति। तो यह कहा जाता है कि अगर भगवान के बारे में ज्ञान न हो और संसार से वैराग्य न हो, अनाशक्ति न हो, तो व्यक्ति कैसे भगवान का दर्शन पाएगा? तब कहते हैं ज्ञान वैराग्य युक्तया। जब कोई व्यक्ति श्रवण करता है भगवान की कथा का और उनके नाम का कीर्तन करता है तो उसमें अपने आप संसार से अनाशक्ति होने लगती है। ये भक्ति का सहज प्रभाव है। संसार के भोगों से उसका जीव उबने लगता है, मन विरक्त होने लगता है और भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के रस का उसे अनुभव होने लगता है। इसको विज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तया। भगवान का अनुभव होना इसको ज्ञान कहते हैं और संसार के विषयों से वैराग्य होना इसको वैराग्य कहते हैं, राग नहीं होना। तो भक्ति करने पर, खास करके भगवान की कथा सुनने पर, ये दोनों कार्य अपने आप होने लगते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तया। तो ऐसे ज्ञान और वैराग्य से युक्त, संसार के विषयों से अनाशक्ति और भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का अनुभव, इन दोनों से युक्त भक्ति रहती है तो उस भक्ति के द्वारा तत्व को तत्वेता लोग भगवत भक्त जन साधक जन अपने हृदय में देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। इसीलिए हे द्विज श्रेष्ठा, हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ सौनकादि ऋषि जन, अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा, हे द्विज श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणगण, अतः मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठित स्वधर्म का, ठीक ठीक अनुष्ठित स्वधर्म का फल है भगवान को संतुष्ट करना। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिरार्थोऽसलम्। वर्णाश्रम विभाग सह का अर्थ है कि चार वर्ण हैं, चार आश्रम हैं, और इन आश्रम और वर्ण के अपने अपने अधिकार या योग्यता के अनुसार व्यक्ति ठीक ठीक धर्म का पालन करे, अनुष्ठितस्य धर्म, ठीक से धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो इसका वास्तविक फल क्या है? यदि वह भगवान को संतुष्ट कर रहा है, और भगवान संतुष्ट होते हैं श्रवण आदि भक्ति से, तो अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करने पर अगर भगवान में उसे सहज रुचि हो, भगवान का नाम जपने में, कीर्तन करने में, या भगवान की कथा सुनने में, पढ़ने में अगर रुचि हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उसका स्वधर्म ठीक ठीक फल दे रहा है। उसी श्लोक को इन्होंने पॉजिटिव धारा में किया, जैसे धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयह नोत्पादित यदि रतिम श्रम है वही कहना, इसको निगेटिव पॉइंट से कहा और उसी को कह रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट से। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। कोई कुछ भी काम कर रहा है, मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या वैश्य अपने कर्तव्य का, शूद्र अपने कर्तव्य का, या प्राइम मिनिस्टर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, राज्यपाल ठीक से कर रहा है, तो सब कुछ किया जाए, पर इसका मीटर क्या है कि ठीक ठीक काम हो रहा है? मीटर यह है कि वो अगर भगवान उससे संतुष्ट हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उसके कार्यों से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब उसका स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन ठीक ठीक रास्ते पर जा रहा है। और यदि भगवान संतुष्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति का कर्म, धर्म, क्रियाएं सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। ये बात एक श्लोक में कही गई है, जैसा न तुष्ट भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन। जिस व्यक्ति पर भगवान यज्ञ लिंग प्रसन्न नहीं है, जनार्दन प्रसन्न नहीं है, तो उसका कोई भी शुभ कर्म देखने में कर रहा है तो क्या, लेकिन वो बेकार है, उसकी अधोगति करेगा। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु यहां तक कहते हैं कि चारि वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। यदि कोई व्यक्ति ठीक ठीक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जो उसका विहित धर्म है, लेकिन यदि स्वधर्म का पालन करते हुए भी वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति नहीं करता है, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, तो स्वकर्म करिते से रौरवे पड़ी मजे। यदि कोई सन्यासी है, मान लीजिए चार आश्रम में एक सन्यास आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है सन्यास आश्रम, लेकिन यदि सन्यासी भगवान के नाम का जप नहीं करता है, भगवान के शास्त्र भागवत को नहीं पढ़ता है, भागवत की कथा नहीं सुनता है, तो सन्यासी भी घोर नरक में जाएगा। चारि वर्णाश्रमी कहते। और ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण और काम किया अपने वर्ण के अनुसार, लेकिन वो भगवान का कीर्तन न करे, भगवान की कथा न सुने, उनके नाम का जप न करे, तो वह भी नरक में ही जाएगा। और वो भी रौरवे पड़ी मजे, रौरव कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं घोर नरक। तो इस जीवन में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम नरक न जाएं, सब दुख से बच जाएं, और परम सुख हमें मिले तो उसे चाहिए कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बात को कई बार कहा गया है, एतामान संख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। सब कुछ व्यक्ति करे लेकिन परिणाम देखना चाहिए कि वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है कि नहीं, कृष्ण के बारे में सुन रहा है कि नहीं, या उनका उच्चारण कर रहा है कि नहीं गुणों का नाम का। अगर नहीं कर रहा है तो उसका रास्ता ठीक नहीं है। वो भले सन्यासी है ब्राह्मण है या अपनी ड्यूटी में लगा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, एक बार एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि स्वामी जी यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है अपने काम धंधा में है परंतु वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, जप नहीं करता है, भागवत नहीं पढ़ता है, भगवान की आरती नहीं करता, लेकिन वो ईमानदार है तो उसका क्या होगा? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो ईमानदार की परिभाषा क्या आप देते हैं? ईमानदार मतलब, ईमानदार मतलब बोला वो बेईमान नहीं है। मैं कहा ठीक है, तो ईमान का मतलब क्या होता है? बेमाने नहीं, बेईमान बेईमान तो वो तो ईमान उसमें नहीं है। तो ईमान का क्या अर्थ हुआ? वो कुछ बोला नहीं तो मैं ही उसको समझाया, देखिए ईमानदार का क्या अर्थ, ईमानदार का अर्थ है अपनी वस्तु के अतिरिक्त दूसरे की वस्तु को कोई न ले, इनक्रोचमेंट ना करे, उसको छीने ना, दखल ना दे, जिसकी वस्तु है उसकी उसके काम में आवे, अपनी जो वस्तु है उसी का केवल इस्तेमाल करे तो माना जाएगा कि यह व्यक्ति ईमानदार है। अगर दूसरे की वस्तु को ले रहा है तो बेईमान है, इसमें ईमान नहीं है ना, आप मानते हैं ना? तो उसने कहा कि हां। तो जो व्यक्ति अपने घर का काम कर रहा है, वो बोला घर का काम धंधा कर रहा है और मान लीजिए ईश्वर को भजता नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो ईमानदार है ना? ठीक है, अगर आप इस परिभाषा के अनुसार विचार करें जो दूसरे की वस्तु को ना ले, तो मैंने उसे समझाया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी मनुष्य हवा से सांस लेता है ना, ये हवा उसके द्वारा बनाई हुई है। तो पूछा जाए, सूरज के प्रकाश में काम करता है, सूरज को उसने बनाया क्या? सूरज के प्रकाश में काम कर रहा है ना, यहाँ सरकार ने बिजली दिया है, बिजली के प्रकाश में लोग काम करते हैं तो उसका बिल बनता है, महीने में बिल आता है, और बिल अगर न दे तब तो बिजली तो काट ही जाती है, उस पर और फाइन किया जाता है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी वस्तुओं को ले रहा है, पहली तो हवा है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जी रहा है, खा रहा है, पृथ्वी का उत्पादन ले रहा है, कपड़ा पृथ्वी से बनता है और भोजन सब अन्न फल दूध ये सब पृथ्वी से आ रहे हैं। क्या वह व्यक्ति जो अपने घर का काम धंधा करता है, ईश्वर का भजन नहीं करता है, इन सब वस्तुओं को अपने आप लाया है क्या? ये उसकी है, ये किसी का बनाया हुआ है ना? तो मैं सीधा उत्तर दे कि वास्तव में ईशावास्यमिदम सर्वम जतकिंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिथा मा गृध कसुसिद्धनम। उपनिषद कहता है कि यहां जो कुछ भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ यह ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, अर्थात उसने बनाया है और उस पर उसका कंट्रोल है। तो भगवान की आज्ञा से, भगवान को प्रसाद अर्पण करके भोग अर्पण करके या उनकी आज्ञा के अनुसार जो हमारे लिए उन्होंने कोटा किया है उसी को भोगना चाहिए। अगर भगवान की याद न करते हुए और भगवान के कोटा से बाहर वो कुछ ग्रहण करता है तो वह पाप करता है, उसकी दुर्गति होगी। जैसे भगवान ने नियम बनाया है, इस करोड़ों स्त्रियां हैं संसार में, किसी एक लड़की का, किसी एक स्त्री का पाणी ग्रहण करके वेद विधि से समाज में, और उसके साथ कोई रहता है तो यह धर्म है, क्योंकि यह ईश्वर की आज्ञा है, ये भगवान की आज्ञा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके अनेक स्त्रियों से इलीगल संबंध करता है तो वह पापी है, समाज भी पापी मानता है, समाज भी इसको क्राइम मानता है, उसे दंड दिया जाता है। भगवान तो कहते ही हैं कि यह पाप है। तो इसी प्रकार से हमें संसार में कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से किसी चीज को ग्रहण करना है, सब नियम बनाया गया है। जैसे कोई चीज खा रहे हैं शाकाहारी, नॉन वेज नहीं, शाकाहारी भोजन, तो उसको कहा गया है गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसको पहले मुझे अर्पित करो, भगवान ऐसा कहते हैं, उसे मुझे अर्पित करो और इसके बाद यदि उस प्रसाद को खाओगे तो तुम सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति पर हृतम अश्नामी प्रयतात्मना एवं शुभ शुभ फल मोक्ष से। भगवान कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो शुभ शुभ कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का नहीं खा रहा है? जन्म लेते समय क्या दो चार टुकड़ी मिट्टी लेकर के आया था क्या कि यहां खड़ा रहूंगा? खाली हाथ आता है ना, सभी लोग खाली हाथ आते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे देश का मालिक हो, पूरे राष्ट्र संघ का मालिक हो, कहीं का हो, सब खाली हाथ आए, और खाली हाथ जाना भी है, सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। बीच में इतना फल फूल अनाज पानी दूध सब पी रहे हैं, खा रहे हैं, ये किसका है? वास्तव में सब भगवान का है। तो भगवान को जो नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, वह व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का तिरस्कार करे, भगवान को न माने और कहे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उसी प्रकार से वो दंडनीय है जैसे चोर। मान लीजिए चोरों का कोई गिरोह है तो लोग अपना रिसोल्यूशन बनाते हैं, चोर लोग, कि रात में चोरी करने जाएंगे या कहीं तो बोलना मत, हल्ला मत करना, और घर का मालिक जग जाए तो ऐसे भागना, ये करना वो करना। मान लीजिए चोरों का अपना नियम हो और वे चोरी करे सफलतापूर्वक, और जो चोर चोरी करता है सफलतापूर्वक तो उसको वो लोग हो सकता है कि नोबेल प्राइज भी दें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको उसको पारितोषिक देंगे। चोरों का समुदाय, चोरों में जो हेड है वो उसको इनाम देगा, बहुत अच्छा तुमको ये डिग्री देता हूं और तुमको इतना महीने में दूंगा, ये दूंगा, बहुत अच्छा चोरी किया। लेकिन उसी समय मान लीजिए चोरी के धन को किसी वृक्ष के नीचे या कहीं घर में वो लोग बांट रहे हों, तो उस समय कोई चोर ऐसा कहे ये भाई देखना बेईमानी न हो, ईमानदारी से बांटना, चोरी के धन को ईमानदारी से बांट रहे हैं, उसमें से एक पैसा भी लेना क्या ईमानदारी है? अगर उसी समय पुलिस को पता लग जाए कि ये चोर सब आपस में बांट रहे हैं चोरी का धन, और वो लोग कहेंगे कि ईमानदारी से बांटो, तो पुलिस आकर के डंडा से मार करके क्या कहेगी? ठीक है, हम अपने ईमानदारी से तुमको पीट रहे हैं क्योंकि सरकार हमको वेतन दे रही है। पुलिस के दृष्टि में अब चोरों का वो धर्म धर्म नहीं रह जाएगा ना, वो पाप होगा। इसी तरह से बेईमान लोग इस दुनिया में ईमानदारी कायम किए हैं, तो प्रभुपाद जी उसको नाम दिए हैं ऑनेस्टी इन थीव्स, चोरों में ईमानदारी। चोर सब ग्रहण कर ले भगवान का धन, इतना भूमि है, भूमि के अंदर पेट्रोल है, ये है वो है, और चोरों ने ईमानदारी से बांट लिया है, ये हमारा इतना है, तुम्हारा है, ये है वो है। पर कोई चोर ये नहीं कहता है कि ये सब भगवान का है, अगर उसको कहा जाए तो उसको कहेंगे रूढ़िवादी है, जिसको ठीक ज्ञान नहीं है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, ये क्या करने लगे। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कह दे अरे वो मालिक का धन है उसको क्यों छीन रहे हो, चुरा रहे हो, ये कर रहे हो, तो वैसे ही कोई कह दे कि नहीं सब ईश्वर का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, भगवान के धन को भोगने से पहले भगवान का परमिशन लो, अगर उनका परमिशन है तब तो भोगना चाहिए, नहीं तो क्यों इतनी फजीहत सहेगा, क्यों नरक में गिराया जाएगा, क्यों मारा जाएगा। कोई बुद्धिमान आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो सब कुछ वास्तव में भगवान का है, भगवान को जो प्रणाम नहीं करता है, भगवान का जो जस नहीं गाता, नाम नहीं लेता, वो कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता है। वो एक नंबर का महाबेईमान है और कहता है ईमानदार से, ईमानदारी से कर्म कर, उसी ईमानदारी की भर्त्सना शुद्ध गोस्वामी कर रहे हैं। यदि भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप आदि कर रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा सब गड़बड़ी है। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितो शरणम्। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। और कंक्लूजन करते हुए कहते हैं इसलिए तस्माद् एकेन मनसा, एकाग्र मन से, सब ओर से मन को हटा करके एक मन से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय और उनका ध्यान करना, चित्तवृत्ति को उनके रूप गुण लीला में ले जाना और उनकी पूजा करना, यही जीव का सर्वोपरि धर्म, यही करना चाहिए। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। एकेन मनसा का अर्थ है एकाग्र मन से, मन को कहीं इधर उधर न ले जा करके, एक अग्र एकेन मनसा अखंडित मन से भगवान के विषय में सुनना, क्या सुनना, उनके रूप गुण लीला चरित्र नाम आदि को सुनना और इन्हीं का कीर्तन करना। कीर्तितव्यश्च भगवान सात्वताम पति, जादवों के पति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन करना, कीर्तितव्य उनका कीर्तन करना। कीर्तन में प्रधान कीर्तन है नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है किसी की कीर्ति का प्रसार करना, जो कीर्तन कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करना, श्रवण करना और उसी पर चित्त वृत्ति को लगाना, ध्येय और पूज्य और पूजा करना, चकार आदि से नमस्कार आदि करना। तो भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करना और उसमें भी मुख्य रूप से श्रवण कीर्तन और ध्यान स्मरण और पूजन अर्चन, और वह भी सब समय, ऐसा नहीं कुछ दिन किया कुछ काल किया और दिन नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो संडे को करते हैं बस, नौ और छह दिन बिल्कुल नहीं करते, नित्यदा प्रतिदिन करना चाहिए और सब समय करना चाहिए, रात में दिन में, इसको नित्यदा कहते। दा का अर्थ होता है समय, जैसे सर्वदा, कदा, कदा माने कब, तो नित्यदा सब समय करना चाहिए। इस संसार में देखा जाता है कि सनातन धर्म मानने वालों में भगवान की आराधना के विषय में अखंड इस तरह के नियम हैं, प्रतिदिन करना, समय पर करना, ढंग से करना। और संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, देखे गए हैं, वो ये जानते हैं कि संडे को ही भगवान यहाँ आते हैं, बाकी और दिन नहीं आते हैं, और संडे को भी आकर के करते क्या है, जो छह दिन पाप किए हैं सात दिन वो आकर के देते हैं कि हमारे पाप लो और तुम सफर करते रहो और हमको फ्री कर दो पाप करने के लिए, इस प्रकार का विचार, ये सब भक्ति शक्ति नहीं है। नित्यदा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सब समय सभी देश में और सभी काल में करना चाहिए, सब स्थान में। कीर्तनियों सदा हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकेन मनसा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि एक मन से करना चाहिए, मन को इधर उधर बांट करके नहीं, उसी में मन समाहित होना चाहिए। भगवान का मान लीजिए कोई श्रवण कर रहा है तो कर रहा है, पढ़ रहा है पढ़ रहा है, उसको कीर्तन कहते हैं, या भगवान के नाम का उच्चारण, गुण का कीर्तन भजन आदि जो कर रहा है, तो पूरा मन चारों ओर से समेट करके उस कीर्तन को ही, श्रवण को ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म पुरुषार्थ समझ करके उसे करना चाहिए। तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। श्रवण और कीर्तन के बाद इच्छा लगाया गया है, उसका अर्थ अनुमोदन करना, खुश होना। यदि दूसरे लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं या कह रहे हैं तो उनको देख करके जो मन में मोद होता है उसको अनुमोदन कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करता है, बहुत अच्छा काम है आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहिए। इस प्रकार के आयोजन करना भगवान के कीर्तन का, रथ यात्रा का, या भगवान के कथा का, यह वास्तव में पुण्यवानों के भाग्य में लिखा होता है। धन तो बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन इस प्रकार की जब भावना हो कि मैं कराऊं, मैं करूं, मैं इसमें कुछ सहयोग दूं, ये करूं, तो इसको अनुमोदन कहा जाता है, इसको अनुमोदन कहते हैं। भगवान की भक्ति के लिए सुविधा देना, इस चकार शब्द से ये ध्वनित किया गया, श्रोतव्य कीर्तितव्य च च च का अर्थ है श्रवण कीर्तन करने वालों को हेल्प करना। अब जैसे मंदिर बनाने के लिए कोई जमीन देता है तो ये वास्तव में उसका बहुत बड़ा अनुमोदन है। रामायण में लिखा गया है कि कहा ही सुन ही अनुमोदन करही भव बारिध गोपद तरही। जो भगवान के विषय में बोलते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं और जो अनुमोदन करते हैं, वो भव समुद्र को, संसार सागर को गोपद की तरह पार कर जाते हैं। गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को लांघने में क्या परिश्रम है, इस तरह से आसानी से जन्म मृत्यु के प्रवाह को लांघ जाते हैं। यहां पर च शब्द जो दिया गया है उसमें यही ध्वनित है। और ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्येय पूज्यश्च चकार से कहा गया है कि भगवान की वंदना करना, भगवान को सखा समझना, भगवान को आत्मनिवेदन करना, ये च शब्द से इतनी बातें ध्वनित होती हैं। और श्रवण कीर्तन के स्थान पर जो च शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है अनुमोदन। अनुमोदन कई तरह से किया जाता है, वाणी से भी कोई आदमी वर्णन करे कि भाई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कह दे कि ये भक्त लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो कहना बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह से वाणी से भी कोई कहे या मन में भी खुश हो तो इसको अनुमोदन कहते हैं। और फिर शरीर से लगे और धन लगावे व्यक्ति, तब तो कहना ही क्या। यदि किसी के धन से मंदिर बने, जमीन मिले, मंदिर बने और वहां पर बरसों बरसों तक लोग भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करें, कीर्तन करें, उनकी पूजा करें, ये कितना बड़ा पुण्य है। उस व्यक्ति को अपने आप भगवान के चरण की प्राप्ति हो जाती है इस पुण्य कर्म से, इस महान कर्म से, जिसके प्रयास से लाखों लोग, हजारों लोग भगवान के बारे में सुने, बोले, तो यह पुण्य उसको जाता है। इसको चकार शब्द से यहां प्रकाशित किया गया है। एक मन से भगवान कृष्ण का ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। जदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम। और सबसे बढ़ करके जो सुखदेव शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण के कथा रति को। कथारति कौन कुरियत कथारति में, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में, उनकी चर्चा में, उनकी कथा में रति नहीं करेगा। रति का अर्थ है रत हो जाना, अनुराग हो जाना। कौन ऐसा है जो प्रेम नहीं करेगा? जदनु ध्यासिना, जिनके अनुध्या रूपी तलवार से विद्वान लोग कर्म ग्रंथि को काट डालते हैं, केवल भगवान पर यदि चित्त लगाया जाए तो उससे जीव का कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है। इस अनुध्यान को असी का तलवार, जिनके ध्यान रूपी तलवार से विवेकी लोग कर्मबंधन काट डालते हैं और इस देह में जो अहम बुद्धि है ये पूरा पूरा निरस्त कर देते हैं, जिनके ध्यान की ही इतनी महिमा है, तो ऐसे प्रभु के कथा में कौन नहीं रति करेगा, अर्थात सब करेंगे। कौन कुरियात कथा रति में, यह कहे जब सुत गोस्वामी, तो सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि सुत जी, ये बात समझ में आ गई कि भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि होना, रति होना, यही सबसे बड़ी सफलता है मनुष्य की, सबसे बड़ा काम ही। लेकिन ये होगा कैसे, होगा कैसे? प्रायः लोगों की भगवत कथा में रुचि नहीं होती है, इस संसार में देखा गया, कैसे होगा? तब सूत जी उपाय बताते हैं। शुश्रूषो सद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि, श्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवण। वासुदेव कथा रुचि ही स्यात्, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो वासुदेव के कथा में रुचि कैसे होगी, इसका उपाय बताते हैं। पहले तो उस व्यक्ति में दो गुण होना चाहिए, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, सुनने की इच्छा होनी चाहिए, सुनने सुनना वो चाहे, हल्की इच्छा के लिए कहा गया शुश्रूषो, बोले सुनना चाहे। अगर कोई यह पूछे कि वो सुनना चाहे ही नहीं, तब उसके लिए कोई उपाय नहीं है। सुनना अगर चाहे तो सुनने में उसकी रुचि हो सकती है, पहला गुण है शुश्रूषो हो। अगर जिसे सुनने की इच्छा है कि हमें भगवान की कथा मिले, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया जाए, गान किया जाए, तो मैं सुनूं, तो पहले उसमें सुनने की इच्छा चाहिए, इसको शुश्रूषु कहते हैं। और दूसरा गुण है श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है कि ये कथा सुनना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बातें कही जाती है, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका गुण है, ऐसी लीलाएं हैं, इस विषय में उसकी दृढ़ श्रद्धा हो, रुचि हो सकती है, पहला गुण है शुश्रूषो हो। अगर जिसे सुनने की इच्छा है कि हमें भगवान की कथा मिले, भगवान की सरलता या उनके अन्य बहुत सी लीलाएं हैं जो भागवत में दी गई हैं, तो इस पर उसको विश्वास हो कि बिल्कुल सत्य है, सत्य है, कृष्ण नामक ईश्वर हैं, प्रभु हैं, परम सुंदर हैं, परम दयालु हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, इन सब बातों में उसकी अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। ये भगवान के रूप गुण लीला आदि में श्रद्धा है और सुनने की इच्छा है, तो उसको वासुदेव की कथा में रुचि हो सकती है, रति हो सकती है। कैसे होगी? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, स्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हे विप्रो, हे ब्राह्मणो, ऐसे व्यक्ति को चाहिए, अगर श्रद्धालु है और सुनने का इच्छुक है, तो वह पुण्य तीर्थ में जाए, पवित्र पवित्र करने वाले धाम भगवान के, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, ऐसे धाम में पहले जाए, पुण्य तीर्थ में, वहां जा करके महात्माओं की सेवा करे, तो उनके सेवन से वासुदेव के कथा में रुचि हो जाएगी, ऐसे होती है, विधि है। पहले पुण्य क्षेत्र में जाए, पुण्य तीर्थ निसेवन, पुण्य तीर्थ, भगवान जहां लीला किए हैं और भगवान के अर्चा विग्रह जहां रहते हैं, जहां भक्त जन रहते हैं, तो उसको पुण्य क्षेत्र कहा गया। प्रायः ये भक्तों का स्वभाव देखा गया है, जैसे नमिशरण के ऋषि लोग कहते हैं कि कलयुग को आया जान करके हम लोग भाग करके इस वैष्णव क्षेत्र नमिशरण में आए हुए हैं। इसी तरह से भक्त लोग भगवान के लीला स्थान में रहना पसंद करते हैं। ये स्वभाव होता है भगवान के भक्तों का, और इसलिए वो भगवान के धाम में भाग जाते हैं कि वहां पर उन्हें अन्य वैष्णवों का संग मिलता है, और कुछ से झुंड नहीं होने पर फिर श्रवण कीर्तन हो नहीं सकता है। इसीलिए भक्त लोग धाम में जाते हैं कि वहां पर कई वैष्णव होते हैं, कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सुनने का अवसर मिलेगा। जिसको जो वस्तु की इच्छा होगी वो वहीं जाएगा ना। मान लीजिए किसी को कुछ खरीदना है तो व्यक्ति पता लगाता है कि किस बाजार में ये हमको वस्तु मिलेगी, किस दुकान में मिलेगी, तो वहां वो जाएगा। तो भगवान की चर्चा और भगवान के विषय में श्रवण आदि ये भगवान के धाम में स्वाभाविक होता रहता है। आज भी आप देखें जैसे वृंदावन धाम है तो 4 बजे के बाद, जाड़े के दिन में 4 बजे के बाद और गर्मी में 5 बजे लगभग, सैकड़ों जगह कथाएं होती हैं, सैकड़ों जगह कथा होती रहती है। स्वाभाविक शाम के समय लोग करते हैं, स्वाभाविक होती रहती है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार कथाएं होती हैं भगवान के विषय में, और कई लोग ऐसे अटेंड करते हैं। और धाम में भगवत कथा श्रवण कीर्तन पूजन के अतिरिक्त बहुत काम नहीं रहता है। तो भगवान के धाम में भगवान की लीलाएं हुई हैं तो धाम भी अपने प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा करता है, और ऊपर से वैष्णव महतगण वहां गए हुए हैं, श्रेष्ठ वैष्णव, तो उनका संग मिलता है उन्हें। तो पहले तो पूर्ण तीर्थ निसेवण करें, निसेवणात्, निसेवण का अर्थ यह है कि पूर्ण तीर्थ में जाकर वहां पूर्ण तीर्थ में स्नान करें और सेवन करें। सेवन का एक और भी अर्थ है कि धाम में उसका मार्जन करें, झाड़ू दे और भी कई तरह से उसका सेवन करें। सेवन का एक और अर्थ भी होता है कि वहीं पर टीका रहे, यह अभी निसेवण ही है। भगवान के धाम में रहना भगवान का एक सेवन है, भगवान के धाम की श्रद्धा है, उसके प्रति पूजा है, तो इसको निसेवण हम कहते। पूर्ण तीर्थ निसेवणात्, वहां रहे, और वहां रह करके फिर क्या करे, स्यान महत सेवया विप्रा पूर्ण तीर्थ निसेवणात्, पूर्ण तीर्थ में रहे और इसके बाद महत सेवा। महत बार बार कहा गया है भागवत में, महत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का भक्त, उन्हीं को महात्मा कहते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्ये वो सुहृदः साधो, ये भगवान ऋषभ देव कहते हैं महात्मा का लक्ष्य। और स्पष्ट उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण में जिनकी प्रीति है वही महात्मा है, श्री कृष्ण से जिनको प्रेम है। तो ऐसे महात्मा धाम में प्रायः रहते हैं और उनका कार्य ही है भगवान की गुणावली गाना, गाथा गाना, श्रवण कीर्तन करना, हमेशा महात्मा लोग इसी काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे महात्माओं की सेवा जो व्यक्ति करता है, सेवा दो तरह से करता है, एक तो उनके मुख से भगवान की लीलाएं कथा सुनता है, और दूसरी उन महात्माओं के सेवा के लिए उनको जो उनको सुविधा देता है। सुविधा देने का मतलब यह है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे और उन्हें भोजन आदि की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था कर दे, इसी को महत सेवा कहते हैं। तो महत सेवा करने से महात्मा लोग स्वाभाविक प्रसन्न होकर के भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, और इस तरह से अपने भक्ति रस पूरित भाव भाषा में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कि वो सुनने के बाद निश्चित भगवान के कथा में रुचि हो जाती है। स्यान महत सेवा या विप्रा पूर्ण तीर्थ निसेवणात्, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में उनकी रुचि हो जाती, ये उपाय है। और रुचि हो जाए कथा में तब तो कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद छह श्लोकों में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, ये जो छह श्लोक इसके बाद आए हुए हैं इनको श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में याद कर रहे थे। जब अमेरिका सबसे पहले जब गए पहुंचे, वहां के लोगों की रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति को देख, खान पान बिगड़ा हुआ, शराब पीने वाले, व्यभिचार में रात, सारे दोष दुर्गुण भरे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी एक गीत लिखे हैं। उस गीत में कहते हैं कि हे कृष्ण, आप क्यों इस देश में मुझको लाए, मैं तो यहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप हृदय में बैठ करके हमको यहां लाए तो जरूर आपका कोई काम है यहां पर, लेकिन आप हमें योग्यता दीजिए, हमें क्षमता दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूं। और कोई उपाय नहीं सूझ रहा था प्रभुपाद जी को, तो भागवत के ये छह श्लोक, छह में से चार ही लिखे, तो ये छह श्लोक उनको याद आए। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्थ य भद्राणी विधनोति सुहृत्सताम। यहां से प्रारंभ करके अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वहां तक गए। तो प्रभुपाद जी भागवत के इन श्लोकों को याद कर रहे थे, कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो उसके हृदय में कथा के द्वारा अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय के अनर्थ को दूर कर देते हैं, अभद्र को दूर कर देते हैं, और इस प्रकार से उसका अनर्थ दूर होता है तो कृष्ण में भक्ति होती है, कृष्ण में भक्ति बढ़ जाती है तो उसका हृदय ग्रंथि उसकी टूट जाती है, संशय मिट जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं और भगवत तत्व विज्ञान हो जाता है उसके पहले। तो ये सब श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत आश्वासन दिए, तो उन्होंने सोचा कि यदि हम कृष्ण का वर्णन करते हैं कृष्ण कथा का और कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा से सुनेगा तो उसका मंगल निश्चित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इन्हीं श्लोकों पर आश्वस्त हुए और भगवान की बातें बोलने के लिए वे राजी हुए कि भगवान की बात बोलूंगा, गाऊंगा या भगवत गीता में भगवान का उपदेश बोलूंगा, भागवत से बोलूंगा, अवश्य इनका रजोगुण तमोगुण दूर होगा और कृष्ण में अनुरक्त हो जाएंगे। और वही हुआ। तो श्रील सूत गोस्वामी यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयतस्थो य भद्राणी विधनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री कृष्ण को यहां पर दो विशेषण से विभूषित किया गया है, कृष्ण कथम होता पुण्य श्रवण कीर्तन और सताम सुहृत। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन पुण्य है, पवित्रता विधायक, जीव को पूर्णतः पवित्र करने वाला है। श्री कृष्ण कितना पावन है, उनकी लीलाएं कितनी पवित्र हैं, इस बात को सहज समझा जा सकता है जब भगवान का नाम, भगवान के चरित्र का उच्चारण यदि जीव को पवित्र कर देता है तो भगवान अपने आप में परम पवित्र है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि कृष्ण का आचरण ठीक नहीं है, वो पवित्र नहीं, खास करके परिस्त्रियों के साथ नाचने की बात का स्मरण करके वो कहते हैं, लेकिन सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पावन है, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन में, गीता में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं और सबके परम आश्रय हैं और आप परम पवित्र हैं, आपसे बढ़ करके पवित्र कोई नहीं है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप शाश्वत अविनाशी पुरुष हैं, अज हैं, अविनाशी हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, सभी ऋषि लोग यही बात कहते हैं कि कृष्ण परम पावन है, कृष्ण परम पावन है। जिनके बारे में कोई कथा करे या उनका नाम सुने या बोले तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तो फिर भगवान कितने पवित्र हैं, इसको समझा जा सकता है। कभी कभी लोग भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है और फिर भी बोलने लगते हैं, और उसके द्वारा वे केवल अपना मूर्खता जाहिर करते हैं और कुछ नहीं। जानना चाहिए कि कृष्ण क्या है, इनके बारे में वेदव्यास देव ने क्या कहा है, असित देवल देवर्षि नारद आदि क्या कहे हैं। तो जो भगवान के विषय में वे लोग कहे हैं वही प्रमाण है। कृष्ण परम पावन है, परम पवित्र है, इन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो कृष्ण को पुण्य श्रवण कीर्तन कहते हैं, उनका श्रवण और कीर्तन जीवों को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। और दूसरी बात उनकी विशेषता बता रहे हैं, सताम सुहृत, वे संतों के भक्तों के सुहृद हैं। गीता में तो भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं, परंतु वास्तव में भगवान के सौहार्द को वैष्णव लोग ही ग्रहण कर पाते हैं। दूसरे लोग तो उनके सौहार्द को क्या उनकी सत्ता पर भी विश्वास नहीं करते हैं कभी कभी। अगर किसी को भगवान के बारे में बताइए बहिर्मुख व्यक्ति को कि कृष्ण ऐसे हैं, ये हैं, तुम्हारे सुहृद हैं, पहली तो बात है वो सुनना नहीं चाहेंगे, अगर सुनेंगे भी तो उनको पसंद नहीं पड़ेगा। और कृष्ण को सुहृद मानने की बात तो बहुत दूर रही, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब कोई भगवान को अपना सुहृद मानता है, हितकारी मानता है, तो भगवान वास्तव में उस तरह से उसका हित करने लगते हैं। वे सबके हृदय में है, सबके हित ऐसी हैं, लेकिन भक्तों का विशेष हित करते हैं। गीता में कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः परिपाषते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि। भगवान कहते हैं कि अनन्य मन से जो मेरा चिंतन करते हैं, मुझे अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग का अर्थ है जुटाना, उनके पास जो नहीं है वो मैं जुटाता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं, उसको क्षेम कहते हैं। योगक क्षेमम वहामि, मैं योग क्षेम वहन करता हूं। आजकल तो मनुष्य भी कोई संघ बनाकर जैसे तैसे कहते हैं योगक क्षेमम वहामि, तो क्या योग क्षेम वहन करेंगे, और अपना चला लो यही काफी है, दुनिया का योग क्षेम वहन करो। तो भगवान तो कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा कोई चिंतन भर करे तो उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। और वे कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यस्ति न प्रिय, मई भजन्ति माम भजन्ति ये भक्त मई तेषु, तो उनमें मैं रहता हूं वो मुझ में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं तो सम हूं सभी के प्रति, लेकिन जो मुझको मानते हैं तो मैं उनको मानता हूं, उनसे मैं प्रेम करता हूं कल्प वृक्ष की तरह। मैते तेसु चाप्य, ये भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार यहां सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सताम सुहृद, संतों के सुहृद। दूसरे लोग तो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, भगवान की भक्ति करते नहीं, इसलिए उनका सुहृद नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान उस तरह से सौहार्द करते भी नहीं है। जब उनको कुछ मानता ही नहीं है तो वो क्या करें। भगवान सुहृद है संतों के और पूर्ण श्रवण कीर्तन है। तो जब कोई व्यक्ति श्रृण्वताम स्वकथा, भगवान देखते हैं कि यह मेरी कथाओं को मेरी लीलाओं को सुन रहा है, तो भगवान उसके हृदयंतस्थ, उसके हृदय में हृदय अंतस्थ, हृदय के अंदर अस्थित हो जाते हैं। कथा के शब्दों द्वारा भगवान उसके हृदय में अस्थित हो जाते हैं और उसके हृदय के अभद्राणी विधनोती, उसके अमंगल अनर्थ को दूर कर देते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं और उसके सब विषय भोगों के जो प्लान हैं, लालसाएं हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं कथा के द्वारा। इसीलिए भगवान को हृदय में थोड़ा थोड़ा रियलाइज करके भक्त अपने वासनाओं को भूल जाता है। यही है हृदय के अमंगल को दूर करना, उसमें विषय भोग की लालसा, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या आदि नहीं रह जाता है। यह है अभद्र, जो जीव के कृष्ण प्राप्ति में बाधक है, उसको अनर्थ या अभद्र कहते हैं, अशोभनीय पदार्थ। तो भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायस अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो जब भक्त श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन में लगा रहता है, जप में, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब उसके अभद्र नष्ट प्राय हो जाते हैं, थोड़ा नाम भर बाकी रह जाता है, इसलिए प्राय शब्द का प्रयोग किया गया, उसके लगभग सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। किस चीज से नष्ट होते हैं? भागवत सेवया, भागवत सेवन से उसके अनिष्ट नष्ट होते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो वह व्यक्ति जब नित्य ही वैष्णवों की और भागवत शास्त्र की सेवा करता है, तब उसके अभद्र प्राय नष्ट हो जाते हैं। और जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चला भक्ति उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है कि अब उसे कभी हट नहीं सकता है। नैष्ठिकी भक्ति का अर्थ है अपने साधन के प्रति, भागवत पढ़ने के प्रति, भागवत सुनने के प्रति, नाम जप आदि के प्रति, अब वो कभी हट नहीं सकती उसकी चित्तवृत्ति, उसे रस का अनुभव होने लगता है। पहले वो साधन के रूप में करता है, लेकिन धीरे धीरे जब अनर्थ निवृत्ति होती है, अभद्र दूर होता है, तो भक्ति के अंगों में उसे रस का अनुभव होने लगता है। वो बार बार सुनता है, पहले तो वेद शास्त्र की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से वो सुन रहा था या जप कर रहा था, लेकिन जब भक्ति करता है, अभद्र नष्ट हो जाता है, तब अपने आप रस आने लगता है भक्ति करने में, उसे कथा सुनने में, भागवत पढ़ने में, भगवान का नाम जप करने में रस का आभास होता, अनुभव होता है। और इस कारण से उन साधनों के प्रति वह उसकी निश्चल बुद्धि हो जाती है, वो छोड़ नहीं पाता है। इसको नैष्ठिकी भक्ति कहते हैं। अभी साधन भक्ति के प्रति ही बात कही जा रही है, नैष्ठिकी भक्ति, जहां से वो टीके न, संस्कृत में नी का अर्थ नितराम, स्थ का अर्थ टिक जाना, इसको निष्ठा कहते हैं। जहां से आदमी हट न सके, वो कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपने साधन से, अपने भागवत पाठ से, अपनी सेवाओं से वो निवृत्त नहीं हो सकता, वो हट नहीं सकता, इसको नैष्ठिकी भक्ति कहते हैं। ये अभद्र नष्ट होने पर होता है। प्रायेषु शब्द का क्यों प्रयोग है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस पर श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि कुछ कुछ अनर्थ रह जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अनर्थ तो ऐसे नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई नामापराध बाकी रह जाता है, कोई कोई ऐसे, इसीलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। प्रायः का अर्थ है कि 99% तो उसका अनर्थ नष्ट हुआ हो जाता है इस श्रवण कीर्तन करने से, लेकिन कोई कोई थोड़े से अनर्थ बाकी रहते हैं, तो भक्ति करने से ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब भागवत का अर्थ है एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रसपात्र, दो प्रकार के भागवत, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक बहुत बड़ा भागवत है, एक कोटि का भागवत है बड़ा शास्त्र श्रीमद् भागवतम, ये सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। भगवान के नाम गुण लीला आदि का इसमें निरूपण है, यह भगवान का प्रतिपादन करता है, इसीलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवत प्रतिपाद्य है इस ग्रंथ के, और भगवान के भक्तों का चरित्र इसमें दिया गया है, भगवान की लीलाएं दी गई है, इसी कारण से इसको भागवत कहते हैं, भगवत संबंधी शास्त्र। तो एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र में बड़ शब्द लगाया जा रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यह बहुत महान ग्रंथ है, केवल सुनने मात्र से भगवान में प्रेम देता है, अद्भुत इसकी महिमा है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंत में क्या किया? इसको सुना, तो इसलिए इसको बड़ भागवत शास्त्र, बड़ा शास्त्र है। आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दूसरा भागवत है भक्ति रस का भाजन, भक्ति रस से लबालब भरा हुआ भक्त, उसको भी भागवत कहते हैं, जहां भक्ति रस निवास करता है, भक्ति रस जिसमें भरा हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम, कोई भगवान को अपना मित्र समझता है, कोई अपना प्रिय समझता है, प्रियतम, कोई स्वामी, कोई पुत्र, सखा इत्यादि, और भगवान के प्रति वैसे ही प्रेम रस से भरा हुआ व्यक्ति है, तो उसको भागवत कहते हैं। तो दोनों प्रकार के भागवत की जब नित्य सेवा करता है व्यक्ति, तब उसका अनर्थ दूर हो जाता है और भगवान में नैष्ठिकी भक्ति होती है। नष्ट प्राय सभद्र सु नित्यम भागवत सेवया, भगवत उत्तम श्लोक के भक्तिर भवति नैष्ठिकी, सो नित्यम भागवत सेवा कहते हैं। वैष्णवों की सेवा और ग्रंथ की सेवा, तो ग्रंथ की सेवा का मतलब है इसे पढ़ना सुनना, ये अर्थ है, इसे सुनना चाहिए, यही भागवत की सेवा है। और उसमें एक कालव्यापी विशेषण लगा रहे हैं नित्यम, नित्यम के कई अर्थ, नित्यम का एक अर्थ है 24 घंटे और एक अर्थ है प्रतिदिन और सदा, नित्यम के कई अर्थ होते हैं। तो इसे प्रतिदिन और अधिक से अधिक समय तक, सब समय इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद पंचम स्कंध के 6 अध्याय में भगवान ऋषभ देव के चरित्र का उपसंहार करते हुए परपोट लिखते हैं कि भागवत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर संभव हो तो 24 घंटा, सीधा लिखे हैं अंग्रेजी में, श्रीमद् भागवत शुड बी हर्ड और रेड 24 hours a day इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, अगर संभव नहीं है तो 12 घंटा पढ़िए सुनिए, हमने आधा कर दीजिए, और वो भी संभव नहीं है तो 6 घंटा, वो भी नहीं संभव है तो 3 घंटा या जो भी। अब तो संभव के अनुसार, आपके संभव के अनुसार भागवत नहीं कहेगा, भागवत तो स्टैंडर्ड स्थापित करता है कि 24 घंटे सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी यदि पॉसिबल हो तो 24 घंटे सुनना चाहिए, इसका मतलब यह है कि भागवत सुनने के लिए ही ये सारा उपाय किया जा रहा है, भोजन जुटाया जा रहा है, खान पान आदमी का, काम धंधा, उसको ये अवसर दे भागवत पढ़ने का और सुनने का। श्रील प्रभुपाद जी के कहने का आशय ये है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि सेलीला अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तिर दुर्बल जीवन, गौर गोविंद लीला सुनते गलय शिला, भगवान श्री कृष्ण की लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनकर पत्थर भी पिघल सकता है, मतलब पत्थर हृदय पिघल जाएगा, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की इन लीलाओं को कोई न सुने और केवल महाप्रसाद खाए तो उसका भक्त, उसका जीवन दुर्बल रहेगा। खाए यदि अन्न पाने, ये वैष्णवों के लिए कह रहे हैं, से लीला अमृत बिने, ये अमृत न पिए और केवल प्रसाद के नाम पर ये खाए वो खाए वो खाए तो तबे भक्तिर दुर्बल जीवन, ऐसे शरीर से भी कमजोर हो जाएगा और ऐसे भक्ति में तो कमजोर होगा ही, अगर लीला आदि न सुने तो भक्ति में तो कमजोर होगा ही, और ज्यादा यदि महाप्रसाद आदि खाया तो फिर ब्लड प्रेशर आदि क्या क्या ये सब हो ही जाता, वैसे भी दुर्बल हो जाएगा। तो उसे तो सीमित खाना है, लेकिन अमृत पीने में 24 घंटे पी सकते। तो महाप्रसाद से उपमा देते, ये भागवत जो है ये अमृत है, और खाए यदि अन्न पाने, अन्न पाने कह रहे हैं, यदि अन्न खाए महाप्रसाद खाए, वैष्णव के लिए महाप्रसाद शब्द ही यूज किया जाता है, उनके लिए साधारण अन्न या पानी ऐसे नहीं कहा जाता है। तो वैष्णव वास्तव में वो है जो भगवान के लीलामृत को पीता रहता है, चैतन्य महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को सुनता रहता है, गाता रहता है, तो यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो नित्यम भागवत सेवया इसको कहते हैं, नित्य भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, इसको नित्यम भागवत सेवया कहा गया। और 24 घंटे सालों भर, महीने भर, और 2005 में अगर भागवत खूब पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो 6 में भी वही करेगा, 7 में भी वही करेगा, वो बढ़ाता जाएगा, इसको नित्यम भागवत सेवया कहते हैं। नित्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसे विचार किया जाता है, कुछ लोग 7 दिन भागवत सुनते हैं, 7 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो वास्तव में मनुष्यों की कमजोरी को देखकर शास्त्र ने ये व्यवस्था दी है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में सब बातें लिखी गई है। लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं होती है कि वे रोज सुने करें, तो इसीलिए सप्ताह का विधान किया जाता है शास्त्र के अनुसार कि 7 दिन एक संकल्प लेकर के व्यक्ति बैठे और भगवान के विषय में ठीक से सुने। पहले जमाने में बहुत लोगों की शक्ति होती थी शरीर में और चित्त भी एकाग्र रहता था, तो 7 दिन में उन्हें पूरा भागवत सुनाया जा सकता था, रात दिन सुनते थे जैसे परीक्षित महाराज। लेकिन अब 7 दिन में भागवत को पूरा कह पाना यह असंभव है, कहने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए भी असंभव है। लेकिन 7 दिन में भगवान के लीलाओं का कुछ अंश कहा जा सकता है, इसीलिए शास्त्र व्यवस्था देता है। 7 दिन जो है वो नित्यम के अंदर ही है, क्योंकि हर 1 दिन 2 दिन 4 दिन से मंडे से चालू करें। मंडे, यहाँ का भागवत कब चालू हुआ था? मंडे को ही चालू हुआ था, आज उसका समाप्ति का दिन है, तो संडे को पूरा हुआ। भागवत को पूरा कह पाना यह असंभव है, कहने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए भी असंभव है। लेकिन 7 दिन में भगवान के लीलाओं का कुछ अंश कहा जा सकता है, इसीलिए शास्त्र व्यवस्था देता है। 7 दिन जो है वो नित्यम के अंदर ही है, क्योंकि हर 1 दिन 2 दिन 4 दिन से मंडे से चालू करें। मंडे, यहाँ का भागवत कब चालू हुआ था? मंडे को ही चालू हुआ था, आज उसका समाप्ति का दिन है, तो संडे को पूरा हुआ। तो ये 7 दिन सुनना, अगर भगवान की लीलाओं को ठीक से सुना जाए, कम ही सुना जाए, तो परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। और ज्यादा बातें कही जाए और बहुत जल्दी जल्दी भागा जाए, व्याख्या न की जाए, तो जनता के समझ में नहीं आती है वो बात। तो वैसे फैशन के लिए भागवत सप्ताह नहीं किया जाता है। भागवत सप्ताह भक्तों की एक जीवन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। चाहे 7 दिन करे, 5 दिन करे, 2 दिन करे, 9 दिन, 10 दिन। और यदि नैमिषारण्य के ऋषियों की तरह फुर्सत है तो 1000 वर्ष के लिए बैठ सकते हैं, सैकड़ों वर्ष के लिए बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ भक्तों को तो मैं देखा हूं कि वास्तव में नित्यम भागवत सेवा वही करते हैं। यहां भागवत सप्ताह खत्म हुआ, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ये है नित्यम भागवत सेवा, यही है वास्तव में नित्यम भागवत सेवा। नित्य निरंतर चाव है, सुनने की लालसा है, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, मंदिर में सुनो, यहां जाओ, वहां जाओ। ये नित्यम भागवत सेवा का यही अर्थ होता है, निरंतर लालसा बनी रहे और सुना करे, सुना करे, सुना करे। तो नित्यम भागवत सेवा से अनर्थ की निवृत्ति होती है और भगवान में अचला भक्ति उत्पन्न होती है। ये दूसरा श्लोक हुआ। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चये चेत एतैरनाभिद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। इस तरह से भक्त साधक निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, श्रवण कीर्तन करते करते अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति होती है। इसके बाद भक्ति करता जाता है तो क्या होता है, जब नैष्ठिकी भक्ति भगवान में उत्पन्न हो जाती है, साधना में अनुराग होता है, तो उसमें रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि के द्वारा यह चित्त अनाविद्ध होता है, यह अभिभूत नहीं कर पाते हैं दोष, और विशुद्ध सत्व में चित्त अस्थित होकर के बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तदा रजस तमो भावा, भाव माने उत्पन्न, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न भाव चित्त को दबा नहीं पाते हैं, अर्थात रजोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है। रजोगुण का सबसे बड़ा दोष क्या है, विक्षेप पैदा करना किसी साधक में, किसी भक्त में विक्षेप पैदा करना।
वो जरूर चिंतन करता है इधर का उधर का, ये काम करना वो काम करना, ये करो वो करो वो करो, भोगों के प्रति चित्त का इधर उधर जाना, इसको विक्षेप कहते हैं। और तमोगुण लय उत्पन्न करता है, ये साधकों के लिए बात। लय का अर्थ है साधन में अनुराग नहीं होने देता है। व्यक्ति जप कर रहा है, जप कर रहा है तब तक झपकी आती है, या कथा सुन रहा है झपकी आती है, अब ये भागवत पढ़ते समय जम्हाई आने लगे, इसको लय कहते हैं, प्रलय, इसको लय या प्रलय कहा जाता है। चित पकड़ नहीं पाता है अच्छा से। लेकिन जब व्यक्ति इस तरह से नित्यम भागवत सेवा के द्वारा नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न कर लेता है, तो अब उसमें विक्षेप नहीं होता है, उसका चित्त दूसरी ओर जा ही नहीं सकता है, और उसमें लय नहीं होता है, नित्य सावधान सजग उसे रस आने लगता है। तो उस समय काम और लोभ आदि चित्त को अभिभूत नहीं करते हैं, हृदय में अब कोई कामना विषय भोग की या प्रतिष्ठा आदि की नहीं रह जाती है, ये रजोगुण का प्रभाव लोभ है। काम लोभा दया, काम लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि ये जो दोष हैं, अब चित्त को बिल्कुल दबा नहीं पाते हैं, क्योंकि चित्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है, निरंतर सत्व विशुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व में फिर भगवान का आविर्भाव होता है, हृदय में विशुद्ध, हृदय विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेत एत ही अनाविद्धम स्थितम सत्व प्रसिद्धति, विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो उस समय उसी विशुद्ध सत्व की स्थिति में भगवान अपने को प्रकट करते हैं, उसी विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं, और उस वसुदेव में जो अपने को प्रकट करते हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। चौथे स्कंध में भगवान शिव इस परिभाषा को व्यक्त किए, विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तो प्राकृत रजोगुण तमोगुण या यहां तक सत्गुण का भी प्रभाव नहीं रहता है, अभिभूत नहीं हो सकता, भगवान में मन उसका रमने लगता है। और एवं प्रसन्न मन से भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, इस प्रकार से जीव का चित्त मन प्रसन्न हो जाता है, अपने स्वरूप में हो जाता है, निश्चल भगवान में लगने लगता है। तो भगवत भक्ति योगतः, फिर भक्ति तो करता ही रहता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, इस तरह भगवत भक्ति योगतः निरंतर भगवान के नौ विधा भक्ति में स्थित होने से, विशेषकर श्रवण कीर्तन में स्थित होने से वह मुक्त संग हो जाता है, जीवन की सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती है, इसको मुक्त संग कहते हैं, मुक्त संग होता है। और उस दशा में तब भगवत तत्व विज्ञानम जायते, भगवान श्री कृष्ण के तत्व का विज्ञान हो जाता है। तत्व विज्ञान का अर्थ है स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के जो आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका अनुभव होने लगता है, विज्ञान होने लगता है, तत्व विज्ञान। तत्व विज्ञान का अर्थ है कि वे कितना सुंदर है, कितना रसमय है, मधुर है, उनके रूप गुण लीला आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, भगवत तत्व विज्ञान। भगवान हृदय में साफ दिखाई पड़ने लगते हैं, केवल दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, उनकी रसमयता मधुमयता सब कुछ साफ समझ में आने लगता है। तो उस समय जब भगवान का दर्शन होने लगता है हृदय में, तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियंते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, आत्मनि ईश्वरे दृष्ट अथवा आत्मनि स्वस्वरूप भूते। जब भगवान अपने बिल्कुल स्वरूप में भक्त के हृदय में दिखाई पड़ने लगते हैं, साफ साफ देखने लगता है, तो उस समय भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि उसकी टूट जाती है, खत्म हो जाती है। हृदय ग्रंथि का क्या अर्थ है? हृदय ग्रंथि को शास्त्रों में चिज्जड़ ग्रंथि कहा गया है, चित्त और जड़। जीव वास्तव में चित्त है, चिन्मय है, और यह देह जो है वो जड़ है। लेकिन जब चिन्मय जीव अपने को देह मानने लगता है, तो इसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं, चित्त और जड़ में गठबंधन। वो बिल्कुल भिन्न पदार्थ है आत्मा से। आत्मा नित्य है, चिन्मय है, ज्ञानमय है, और यह शरीर नाशवान है और जड़ है और अनेक दुखों का घर है। लेकिन इस नाशवान जड़ देह को ही जब जीव मैं मानने लगता है, इसको अहंकार कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको फाल से ईगो हमेशा कहते, फाल से ईगो, फाल से ईगो, अपने को झूठा ही समझना, देह को मैं मानना। जब जीव भगवान को देखने लगता है, भगवत तत्व का साक्षात्कार अनुभव होता है उसे, तो उस समय ये हृदय ग्रंथि खत्म हो जाती है। वो देखने लगता है कि मैं तो श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, और श्री कृष्ण से ही उसका प्रेम हो जाता है, शरीर को मैं मानना उसका छूट जाता है। अभी तो हम लोग कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, लेकिन सारा काम बॉडी के धरातल पर ही कर रहे हैं। ये कहना और अनुभव करना दोनों में बहुत अंतर है। जब साधक भगवान को हृदय में देखता है, तब मैं देह हूं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इनका अंश हूं, यही हमारे सब कुछ है, भगवान में रस का अनुभव होने लगता है, तब उसके अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है, छिद्यन्ते सर्व संशया, और उसके सारे संशय मिट जाते हैं। भगवान जब तक नहीं मिलते हैं, तब तक भक्त के हृदय में भी बहुत संशय रहता है, डाउट रहता है, कई प्रकार के डाउट रहता है। एक तो डाउट ये रहता है कि जो भगवान कृष्ण के विषय में ये सब लिखा गया है, सचमुच कृष्ण है ना, कि ऐसे ही लिख दिया गया है। कभी कभी भक्तों के हृदय में भी संशय हो सकता है, असंभावनादि संशय, श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, असंभावना कई विषय में, या हम जो भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान इसको अप्रिसिएट करेंगे ना, वो सब देखे हैं ना, क्या भगवान इसका फल हमें देंगे, क्या भगवान हमें दर्शन देंगे, और क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच के बहुत सुंदर हैं और सचमुच सुहृद हैं, हमारे भक्ति के कार्यों से प्रसन्न हैं। ये सब जब तक भगवान का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता है, तब तक जीव का संशय बना रहता है। जब वो आ जाते हैं, तब एकदम सारा संशय खत्म हो जाता है। तो छिद्यन्ते सर्व संशया, अब कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि भगवान को सामने देख रहा है, हृदय में देख रहा है। दृष्टे एवात्मनि ईश्वरे, अपने स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस तरह से हृदय में दिखाई पड़ने लगते हैं, तब संशय कहां रहेगा। भगवान के गुणों के बारे में जो भी असंभावना आदि संशय रहता है, वो समाप्त हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता। लेकिन यह तभी होता है जबकि भगवान का दर्शन होता है, तो उसके पहले संशय बना रहता है। भले किसी भक्त उस दशा में पहुंचे हुए भक्त का संशय बहुत कम होगा, डाइल्यूट होगा, लेकिन कुछ न कुछ संशय बना रहता है। इसीलिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जब दर्शन होता है हृदय में, तब सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संशय रहेगा ही, भगवान श्री कृष्ण हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। पहला तो यही है कि दर्शन देंगे या नहीं देंगे, तो देने के बाद संशय चला जाता है कि दिए, फिर भगवान के सौंदर्य, सौकुमार, सुगंध आदि का अनुभव करता है जीव, कितना सुंदर, कितना मधुर भगवान है, इन सब का वो अनुभव करने लगता है। और भगवान के भक्ति में कितना रस है, कितना बल है, भगवान की प्राप्ति करा दिया उसने, और श्रवण आदि भक्ति के प्रति भी संशय रहता है कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है, क्या श्रवण कीर्तन करने से ही भगवान मिलेंगे। जब मिल जाते हैं तो संशय मिट जाते हैं, हाँ हाँ ठीक, भक्ति में ही सारा बल है, भगवान के जप में, श्रवण में, ये इसी में बहुत बड़ा बल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, छियन्ते चास्य कर्माणि, दृष्टे वात्मनिश्वरे। अब अंत में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, इसी श्लोक से मैं कथा का विराम दूंगा, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। इसी से कवय वासुदेवे भक्तिम कुर्वन्ती, इसी से संसार के जो भी विद्वान हैं, वास्तविक बुद्धिमान जो लोग हैं, वे लोग भगवान कृष्ण में भक्ति करते हैं। वासुदेव भगवती कुर्वन्ती आत्म प्रसादनी, आत्मा को प्रसन्न करने वाली, सुखी करने वाली भक्ति करते रहते हैं। तो ये भक्ति साधन काल और साध्य काल, साधन दशा में भी परम आनंदमयी है, आत्म प्रसादनी, और सिद्ध जब व्यक्ति होगा तो कहना ही नहीं है कितना आनंद आएगा। दूसरे जो साधन हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ जाग आदि करना, तो इस जीवन में भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है, क्या क्या ये करो ये करो। जैसे वो लोग यज्ञ कर रहे थे ऋषि लोग, तो कहते हैं कि धुआं खाते खाते हम लोग बेदम हो रहे हैं। साधन दशा में भी कोई आनंद नहीं है, और स्वर्ग में यदि पहुंचेंगे तो वहां भी वो हमसे ज्यादा सुखी है, उसका पद बड़ा है, ये होर लगी रहती है, और पुण्य क्षीण होने पर फिर गिरना पड़ता है। तो साध्य दशा में भी सुख नहीं है, पर भक्ति ऐसी है कि साधन दशा में भी आनंद ही आनंद है। भगवान की भक्ति करने में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में परम सुख है, और जब भगवान मिलेंगे तब तो कहना ही नहीं, सुख ही सुख है। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा, परमया मुदा का अर्थ परमानंद के साथ भक्ति करते हैं। यहां तो भक्ति में इतना सुख है कि जब भगवान के धाम चले जाते हैं तो वहां भी भक्ति करते रहते हैं, मतलब भगवान का सुनना, भगवान के गीत गाना, भगवान के साथ नाचना खाना, ये सब इसको परमा मुदा कहते हैं। परम आनंद है भगवान की भक्ति में। यहां तक श्रील सूत गोस्वामी दो प्रश्नों का उत्तर दे दिए। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्ति आत्म प्रसादनम्। जीव का एकांतिक श्रेय क्या है और समस्त शास्त्रों की सारभूत वस्तु क्या है, इन दो प्रश्नों का उत्तर यहां तक दे दिए। क्लियर प्रश्न का उत्तर हुआ, प्रश्न भी क्लियर था और उत्तर भी बिल्कुल क्लियर है। तो जो कवय, कवय से तात्पर्य जो विवेकी लोग, जो विद्वान हैं, समझदार हैं, वे लोग परम आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते रहते हैं। परमया मुदा, परम आनंद के साथ भक्ति करने में भी आनंद ही आनंद है। इसलिए ध्रुव महाराज की स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपना घर छोड़ा था सीसा खोजने के लिए, बहुत बड़ा राज्य कांच खोजने के लिए, लेकिन हमको स्पर्श मणि मिल गया, पारस पत्थर मिल गया, आप मिल गए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने जबरदस्ती उनको राज्य दिया। इसके पीछे कारण है, भगवान ने सोचा कि कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है और हमसे कुछ चाहता है तो उसको जरूर देना चाहिए, अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि ये भी कृष्ण भगवान का या विष्णु भगवान का कोई भजन करता है तो ये उसका मन बदल देते हैं, क्योंकि ये देना नहीं चाहते। ध्रुव धन चाहते थे, राज चाहते थे, अगर भगवान नहीं देते तो लोग दुनिया में यही कहते कि विष्णु भगवान कोई जादूगरी करते हैं, भक्त कोई मांगने जाता है तो उसके हृदय से इच्छा ही खत्म कर देते, केवल बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि नहीं नहीं, हम केवल कलंक सहे, हम तो ध्रुव को दे करके ही रहेंगे। भगवान दिखाना चाहते हैं कि कोई हमसे जो कुछ भी चाहता है तो मैं उसे देता हूं और उसे प्रसाद बना करके देता हूं, फिर वो राज या धन उसे बंधन में नहीं डाल सकता। तो भगवान ने दिया, अपना स्वभाव दिखा रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूं कृपण की बचाने के लिए ध्रुव की बुद्धि को बदल दू, ये करूं वो करूं ना दू। उन्होंने दिया, इसके द्वारा भगवान मनुष्यों को सिखा रहे हैं तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो। भगवान ये अपना स्वभाव व्यक्त कर रहे हैं, वो देते हैं, जो भी चाहिए मांगो। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसी व्यक्ति को केवल भगवान से प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, या मुक्ति चाहिए, या सब कुछ चाहिए, तो उसे कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, तो व्यक्ति इस तरह से निहाल हो जाता है। तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं उत्तर भारत के ये आरजीबी को क्या कहते हैं हिंदी में, उत्तर भारत के इस्कान के प्रचार के जो अध्यक्ष हैं देवकी नंदन प्रभु, उन्हें मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। और उनके आश्रय में राधा रंजन दास इस भागवत के लिए बहुत परिश्रम किए, और भी भक्तों ने उनको बहुत सहयोग दिया है, जैसे प्रधान गोपिका दास और भी भक्तों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और इस कानपुर में इस ब्रह्मावर्त में भगवान श्री कृष्ण का भव्य सेंटर मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने दान दिया है, जमीन दिया है और बहुत सहयोग करती रहती है, ऐसे श्री अनीता भटनागर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें हमेशा सुखी रखे, उनका मन कृष्ण में लगा रहे, यही शुभकामना है। और बहुत से भक्त पधारे इस कथा में, जहां तहां से, इलाहाबाद सेंटर से और जगह से, वृंदावन से, उन सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मंच छोड़ने से पहले मैं अविनाश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजन संपन्न हुआ, जो दिल्ली से आए हैं कथा सुनने के लिए आज के दिन। और वसुदेव चौधरी जी को तो धन्यवाद देना, अपने को ही देना है, तो ये नित्यम भागवत सेवा में है, जहां भी भागवत होता है जाते रहते हैं, और केवल सुनते ही नहीं है, सुनने वालों को हेल्प भी करते हैं। एक दिन देवकी नंदन प्रभु मीरा रोड बॉम्बे में अनुमोदन कर रहे थे कथा का, तो उन्होंने कहा कि कानपुर आप आइए, आप लोगों का स्वागत है। तो हमने कह दिया कि अरे भाई, कुछ ब्रह्मचारी अकिंचन भक्त हैं तो उनको तो भाड़ा वगैरह भी चाहिए ना। देवकीनंदन प्रभु अभी खड़े थे, तब तक वसुदेव दास जी ने कहा जो जाएंगे भाड़ा मैं दूंगा। तो यह वास्तव में जो वृंदावन से भक्त आए हैं और बॉम्बे से एक दो भक्त आए, उनका इन्होंने इस तरह से सहाय किया, और हमेशा करते ही रहते हैं, जहां जाते हैं वहां मन से, अर्थ से, देह से, सब करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा हो, इनका मन हमेशा लगा रहे कृष्ण में, यही शुभकामना है। सुरपति प्रभु को भी बहुत धन्यवाद जो इलाहाबाद से आए, सभी भक्तों को जिन्होंने कथा को सुना है और जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने आयोजन किया है, किसी भी तरह से जो भगवान कृष्ण में लगे हैं, कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण का मंदिर बनाने में, उन सबके जीवन में सुख हो, सुविधा हो, वे निरोग रहे, उनका परिवार सुखी हो और अबाध रूप से कृष्ण को प्राप्त करें, यही शुभकामना है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु।